आपकी सारी सारी सेक्सुअल एनर्जी अगर गलत जगह पे जा रही है तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। अगर आपका पार्टनर खराब है ना, आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ना कि हमें क्या मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, पहली चीज, या इन्वॉल्व होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए।
यू आर डिसमिसिंग व्हाट पीपल हैव बीन यूजिंग एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर इयर्स। जो अब यू देख रहे हैं फिर तो वो सोचेंगे यार एक काम करते हैं, फर्स्ट डेट का भी दशा और मुहूर्त और होरा वगैरह देख के जाते हैं।
जब जब आप प्लान करोगे ना ये दिन होगा, उस दिन कभी नहीं होगा, बिकॉज वो यूनिवर्स का नेचर नहीं है।
कौन से प्लैनेट्स इन योर चार्ट आर मेंट फॉर रोमांस, सेक्सुअलिटी, पार्टनरशिप, मैरिज?
वो कहते हैं समझदार अगर दिखना हो, आप सबके अंदर कमियां निकालना चालू कर दो तो गांव का सबसे मूर्ख आदमी भी सबसे समझदार लगने लगता है।
Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना। आप इस पॉडकास्ट से जुड़े रह सकते हैं हर ट्यूजडे एंड फ्राइडे 12 PM यहाँ पे आके, सब्सक्राइब बटन दबा के। 1 मिलियन सब्स का यहाँ पोस्टर तक गायब कर दिया गया है, मेरे साथ ही धोखा हो रहा है, मेरे अपने ऑफिस में मेरे अपने मेरे को ठग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग आपको ना ठगे, खास करके शादी के मामले के अंदर, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि मेरे प्रसिद्ध चहीते जिनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, दीपांशु गिरी जी जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर के अंदर महा एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आए इस पॉडकास्ट पे। इससे पहले हमने एक एपिसोड करा था जो बहुत चला है, और हम लोगों ने बात करी कि इनफिडेलिटी क्यों होती है, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं वैदिक चार्ट्स के अंदर जो बताते हैं कि इनफिडेलिटी हो सकती है, किन किन लोगों को शादी करनी ही नहीं चाहिए। दिस इज़ अ प्रीटी कॉन्ट्रोवर्शियल टेक, बट ही गेव इट एनी वे। एंड कैसे वो बताते हैं कि जो राशि मैचिंग, कुंडली मैचिंग वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, अब एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर इट्स इंक्रीजिंगली बिकमिंग फ्लॉड एंड वॉट कैन यू डू इंस्टेड। हम लोगों ने मशहूर एम्बर हर्ड, जॉनी डेप, विल स्मिथ, जेडा स्मिथ और दीपिका पाडुकोन, रणवीर सिंह की जो ये अभी क्लिप सर्कुलेट हो रही है, इन सब पे भी चर्चा करी। वी टॉक्ड अबाउट कि यूनियन ऑफ मैरिज कितना प्रेशियस है और कैसे एक पार्टनर आपको टॉप पे लेके जा सकता है और कोई और पार्टनर आपको नीचे ले जा सकता है। मैरिज, लव, इनफिडेलिटी, चीटिंग, सेक्रेडनेस सब डिस्कवर हुआ है इस बहुत बढ़िया 1.5 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर, ऑल अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम द लेंस ऑफ मैरिज एंड कंपेनियनशिप। द एपिसोड विद दीपांशु गिरी बिगिंस इन 3, 2, 1। क्या हाल है, कैसे आप?
मैं बहुत अच्छा हूँ,
बहुत अच्छा लग रहा है आपसे नवंबर के एक अनस्पेसिफाइड डे पे दोबारा से मिलके देहरादून में आपके इस खूबसूरत ऑफिस में जो आपका होम स्टूडियो बनता है, जिससे हमने इसका राहु इन फोर्थ हाउस कर दिया है, थोड़ा सा डीक्लटर करके क्लटर कर दिया है। बट वेलकम टू दोस्तकास्ट अगेन।
थैंक यू।
आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो मुद्दा ऐसा है कि इट इज़ नॉट ओनली इज इट हॉट सेलिंग, राइट, ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से जिंदगी में हिंदुओं के पहली बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है। जब किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो उसके बाद कुछ अगर उसके माँ बाप इंटरेस्टेड होते हैं उसका बर्थ चार्ट भी बनवा लेते हैं, ठीक है, एवरीवन लाइक्स नो, सम पीपल डोंट, टाइम्स आर चेंजिंग, बट वेदर इट इज़ अ लव मैरिज या अरेंज मैरिज, बहुत हाई चांसेस हैं कि कुंडलियाँ ज़रूर मिलवाई जाती हैं लड़का लड़की की, है ना,
पंडित जी मिला भी देते हैं
किसी भी तरीके से, नाम चेंज करके बहुत तरीके शादियां चल जाती हैं देश में
जी।
फिर उसके बाद अगर शादी
में आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, चल जाती थी
नॉट एनीमोर, बट इज दैट वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जस्ट द कल्चर वी
आर इन, इट्स द वे वी हैव बीन इवॉल्वड।
ओके, तो ये सब हो रहा होता है एंड फिर शादियों के अंदर कुंडलियों के अंदर मिसमैच होता है और दिक्कत होती है, तो दैट इज व्हेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी कम्स टू एडल्ट इंडियंस लाइव्स अगेन। अब हम रिसेंटली देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर, जैसे कि अभी दीपिका पाडुकोन और रणवीर सिंह की क्लिप एक वायरल हुई जिसके अंदर दीपिका पाडुकोन कह रही है कि व्हेन आई वाज फर्स्ट कमिटिंग टू हिम आई वाज आल्सो सीइंग अदर पीपल, और आप देख सकते हो कि रणवीर सिंह जिसको एक टाइम पे एक प्लेबॉय स्टार का दर्जा दिया जाता था कि इससे ज़्यादा वाइल्ड तो कोई है ही नहीं, उसके चेहरे पर एक एम्बेरसिंग लुक है, वो परेशान है कि उसकी बीवी इस तरह से उसको आउट एंड आउट अबाउट अपनी पुरानी क्या कहते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप के बारे में ऐसे ओपनली बात कर रही है कया जोर के शो पर। वी सीन द सिमिलर थिंग हैपन व्हेन जेडा स्मिथ विल स्मिथ को कन्फ्रंट करती है कि भाई मैंने चीट करा लेकिन अपोलोजाइज तू कर, ठीक है। और वी ऑल्सो सीन किस किस पब्लिक घटिया तरीके से जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो ट्रायल था वो डॉक्यूमेंट हुआ था। अब कोई मेरे को बोलेगा कि ये सारे मेल्स हैं जो विक्टिमाइज्ड हैं, मेरे को बस एग्जाम्पल्स वो याद है, आई एम श्योर ऑन द फ्लिप साइड ऑल्सो इट्स ट्रू, राइट,
बिल्कुल।
हो सकता है इनकी कुंडलियाँ मिली हो ना मिली हो, बट वट आर सम ऑफ द इंडिकेशंस कि हाउ पीपल कैन चूज देयर लाइफ पार्टनर्स और मेक श्योर कि यार कौन से ऐसे चार्ट्स या हाउसेज हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर लोग मानते हैं, सो दैट यू कैन प्रिवेंट इनफिडेलिटी एंड लाइक कोर्ट केसेस एंड डिवोर्सेस।
विनम्र, शादी क्यों करनी है इस बात का ना एक बेसिक फंडामेंटलिज्म लोगों को पता होना चाहिए। शादी से होता क्या है कि दो लोग मिलते हैं, सेक्सुअली मिलते हैं, आपसे अपोजिट एनर्जी से आपने मिलना है, आपने अपने सातवें घर से मिलना है और उससे मिलने से आपको खुशी होनी चाहिए, आप पूरे होने चाहिए। आप पूरे होते हैं इस किसी सातवें घर वाले व्यक्ति से मिलने से, क्योंकि उस एनर्जी को आप जानते नहीं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो कि आपसे अपोजिट एनर्जी का है, तो पहली चीज़ है कि शादी इसलिए की जाती थी, राजाओं के पास इतनी सारी रानियाँ इसलिए नहीं होती थी कि हर एक राजा को बहुत सारी रानियों को शौक होता था। उसको पता था कि मेरे को बहुत सारी एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी, मेरे को ऐसी एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी और मेरे को ऊपर उठना है जिंदगी के अंदर, तो राजा के पास बहुत सारी रानियाँ थी। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को जिस रानी के साथ मिलना है, जिस राजा से मिलना है, उसने मेरे को पूरा करना है अपनी एनर्जी देके। क्योंकि आपकी सारी की सारी सेक्सुअल एनर्जी, और आप इस चीज़ को कितना भी टबू बनाएं, आपकी सारी की सारी सेक्सुअल एनर्जी अगर गलत जगह पे जा रही है तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। अगर आपका पार्टनर ख़राब है ना, आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। एक पार्टनर अच्छा आता है तो वो आपको या तो बहुत 10 गुना बढ़ा देता है, 10 गुना 20 गुना घटा देता है। और कितने लोगों के साथ शादी के बाद ऐसा होता है, उनकी ज़िंदगी बदलती है। तो इसलिए पहली चीज़, किसी के साथ भी सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिसकी एनर्जी आपको नहीं समझ में आती हो।
मतलब व्हाट, हाउ वुड यू नो?
ओके, सो लेट्स सपोज आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सो रहे हैं जो कि कंप्लीटली शनि नेचर का है, उसकी मानसिकता ही शनि है, उसके ना आत्मा के अंदर सर्विंग आ गया है। और आप राजा हो, आप सन हो, आपका काम है डिसीजन मेकिंग, आपका काम है लोगों को लीड करना, विजन देना। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे बंदे के साथ सो जाए, मेल फीमेल दोनों तरफ से काम करता है, जिसके खून में गुलामी बस गई हो, आपका ना डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये बहुत सोच समझ के ध्यान देना है इसको। और मैं बोलता हूँ कि कई लोग शादी के लिए नहीं बने होते, आपको नहीं करनी चाहिए शादी। कुछ लोगों का शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या उनकी शादी आपको पता है कि खराब है 110%। और इसके लिए ना प्राइम एग्जांपल मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है, लूनर एस्ट्रो को शुरू करवाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। इज अ वेरी वंडरफुल फ्रेंड स्टूडेंट। भाई बोलता है मेरे को, धनतेरस पे आज से 4 साल पहले मैंने उससे पहली बार बात की थी, 4 या 5 साल पहले। मैं उसको कई बार मजाक में मैं उसको बोलता हूँ, अच्छा शादी कब हो रही है तेरी? और वो मेरे को बोलता है, सर आप ना एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे को ये कह दो तू शादी कर ले, मैं कर लूँगा। सच्ची में दिल पे हाथ रख के कह दो कि तू शादी कर ले, क्योंकि मेरे को पता है कि कभी भी मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर उसको शादी करने के लिए नहीं कहूँगा।
ऐसा क्या उनके चार्ट्स के अंदर है जो इतना?
शादी के बाद पिटना है उसने,
पिटना है
कोर्ट केस होना है और उसकी वाइफ उसकी आधी वेल्थ ले जाएगी। तो
पर ये तो हम ये नहीं बोल सकते इस तरह की फियर मॉन्गरिंग हो रही है भाई, अब डर के मारे।
तो ये फियर मॉन्गरिंग आप जब किसी अननोन बंदे को बोलते हैं, क्योंकि वो तो दोस्त है ना, वो ही इज एस्ट्रोलॉजर इज वेल,
ओके,
ज्योतिष आता है उसको, बहुत अच्छा ज्योतिष आता है। और उसको हर एक कॉम्बिनेशन मैंने ही पढ़ाया है, उसके बारे में प्रेडिक्ट भी सारी चीज़ें मैंने करी हैं अब तक। तो वो बोलता है, सर आप मेरे को ये बोल दो कि तेरे को शादी कर लेनी चाहिए, मैं कर लूँगा। क्योंकि उसके चार्ट के जो कॉम्बिनेशन हैं वो ऐसे ही हैं। कुछ लोग शादी के लिए नहीं बने होते, उनको शादी नहीं करनी चाहिए, वो सुखी अपना जीवन ना बहुत सुखी तरीके से बिता सकते हैं। कुछ लोग शादी के लिए बने होते हैं, उन जो लोग शादी के लिए बने होते हैं उनके लिए फिर चॉइसिस पिकअप होते हैं कि आपका एनर्जी ये, आपको ऐसे हस्बैंड या वाइफ मिलने वाले हैं, आप उस पर फोकस रखिए, कहीं और नहीं देखना। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ना कि हमें क्या मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, पहली चीज़, या इन्वॉल्व होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए, शादी का प्राइमरी फोकस क्या है? कि मैं ग्रो करना चाहिए, मेरे आगे की संतति होनी चाहिए,
मेरे को जिंदगी भर इसके साथ रहना है, तो हमारा कुछ साथ में यूनियन से कुछ भला होना चाहिए, हमारे बच्चों का, हमारी लेगेसी का, हमारा आपस में सुकून मिलना चाहिए
और खुश रहना चाहिए।
हाँ,
मैं घर जाऊँ तो मेरे को दुख ना हो घर जाते वक्त, घर में घुसते वक्त मेरे को सना लटकाना पड़े, मेरे को खुशी हो घर जाते वक्त। यही तो है ना बेसिक शादी का मतलब, कि मैं अपने सुख दुख, अच्छा बुरा सारा वक्त में बिता सकूँ और वो मेरे को सपोर्ट करे। हस्बैंड है तो वाइफ को और वाइफ है तो हस्बैंड को, हर एरियाज के। और अगर इसके अपोजिट होने लग जाए कि घर जाते ना आपको लड़ाई झगड़ा करने को मिले, सुनने को मिले, आपको खाना खाना भी हावी हो जाए आप पे, आपको क्या लगेगा आपको शादी करनी चाहिए? फिर आप बोलोगे मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए यार, वो ज्योतिष ने कौन सा कुंडली मिलाया था, गुण मिलाए थे। और इसलिए ना मैंने स्पेशली एक कोर्स पढ़ाया कर्म एंड रिलेशनशिप्स करके। मैंने बोला कि अगर तुम अभी भी वो कर रहे हो ना, कुंडली मिला के ऐसा शादी कर रहे हो, तो आप फूल्स पैराडाइज में जी रहे हो।
बट यू आर डिसमिसिंग व्हाट पीपल हैव बीन यूजिंग एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर इयर्स।
हाँ जी, पर वो काम नहीं कर रहा ना सर, परेशानी ये है। एज ए एस्ट्रोलॉजर कभी तो अपने आप से सच्चाई पूछनी पड़ेगी ना वापस। पूछनी पड़ेगी ना विनम्र, अगर नहीं करोगे तो आप इररिलेवेंट हो जाओगे। कभी तो अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यार क्लाइंट के आपने 28 गुण मिलाए थे, क्लाइंट की बात नहीं बनी, तो कुछ तो आपने नहीं देखा ना।
पर एस्ट्रोलॉजर ये भी तो बोल सकता है कि देखो हमने तो मिलाए थे, ऑन पेपर तो चलती है, आप लोग खुद ही इतने बदतमीज हो, हम क्या करें। ये भी एक वैलिड चीज़ है।
तो ये चीज़ आपको शादी के पहले बतानी चाहिए थी कि सर देखो आप शादी के लिए बने नहीं हो, क्योंकि आपका ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये शादी के लिए होता नहीं। ऐसा नहीं कि शादी हो नहीं सकती, हो जाएगी।
पर दीपांशु जी, देश के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर शादी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अब उसकी जो कहते हैं, आप बोल रहे थे कि शादियां चलती थी, शादी चलती होंगी। अब हम एक्चुअली क्या, ऑनलाइन हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग लिव इन में रहते हैं, बहुत सारे लोग कैट मॉम या डॉग मॉम या डॉग फादर ऐसे कुछ कुछ बन जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक एक किसी के साथ रहते हैं, उसको अपना पार्टनर बोलते हैं, उसके साथ बच्चे भी रखते हैं, बट दे नेवर फॉर्मली एंटर इनटू द अग्रीमेंट ऑफ मैरिज। ये सब भी होता है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज दैट्स वेरी लाउड ऑनलाइन, इसलिए हमें लगता है कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन बदल रहा है। लेकिन अगर आप देखो देश में भी दबा के शादियां हो रही है, अभी नवंबर में बैठे हैं, कार्ड और वो सब मिठाइयां आनी शुरू होने वाली हैं।
बिल्कुल,
तो इंस्टीट्यूशन तो कहीं नहीं जा रहा है। तो फिर उसके बाद भी ऐसा बोलना कि बता एस्ट्रोलॉजर से ट्रस्ट हट जाना शादियों को लेके, समझ से नहीं आया।
अभी ना कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, बेचारा कांप रहा था। किस लिए कांप रहा था? क्योंकि ना शुक्र की प्रॉब्लम है, शादी की प्रॉब्लम है, कि शादी गलत जगह हो गई है। आपके जब लाइफ में शादी गलत जगह हो जाती है ना, आप बोलो ना कि शादियां होनी बंद नहीं होती, क्योंकि सोशल प्रेशर ना, सबको लगता है कि वो लड्डू दिखाई दे रहा होता है।
हाँ, सभी लोग शादी कर रहे हैं, whether they like it or not, they're still married.
They're still married, है ना? और उसके बाद वो कितनी जितनी जल्दी मैरी होते हैं, फिर उतनी जल्दी अलग होने का सोचने लगते हैं
नाउ। हाँ,
क्योंकि उनको अब उनकी आजादी के अंदर कोई बाधा बन रहे हैं। अब कोई उनको ये बोल रहा है कि देखो आई एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम यू, वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आती, चाहे वो इन लॉज बोल रहे हों, चाहे वो वाइफ कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो हस्बैंड से। तो ये इंस्टीट्यूशन है ना, ये इसके रूल्स बदल गए हैं। तो इसलिए आप जो गुण मिलान करने की कोशिश कर रहे हो, वो गुण मिलान काम नहीं करते सर। आपको अपने तौर तरीके पुराने वाले बदलने पड़ेंगे। देर इज़ अ वेरी साइंटिफिक मेथड टू मैच चार्ट्स, आपको उन पर जाना चाहिए। नहीं तो ऋग्वेद भी, तो अगर आप मान नहीं है कुंडली, तो कुंडली तो ऋग्वेद से निकली है ना बेसिकली। तो आप ऋग्वेद की बात मानिए कि 10 कोस दूर 10 पीढ़ियाँ, मतलब 10 फैमिलीज इधर 10 फैमिलीज उधर, कोई ना होता हो तो आपके नाड़ी दोष वैसे भी नलीफाई हो जाता है। तो वो सारे के सारे रिचुअल्स आप फॉलो करो, पर आप तो कोई भी ऋग्वेद का कोई पोर्शन फॉलो नहीं कर रहे हो। नाड़ी दोष कहाँ से आया, कहीं से तो आया ना।
नाड़ी दोष क्या होता है?
सो नाड़ी दोष इज कि आप सेम नक्षत्र में शादी नहीं कर सकते।
ओके,
ठीक है। अगर कर लीजिए तो फिर क्या होता है कि आपके जो बच्चे होंगे उनको आगे आपको लीनेज में प्रॉब्लम आएगा।
ओके,
दिस इज बेसिकली नाड़ी दोष। इसको नलीफाई कहाँ से निकला, ये ऋग्वेद से आया है। ऋग्वेद बोलता है कि आप 100 कोस छोड़िए 10 पीढ़ियाँ छोड़िए, शादी कर लीजिए। अब वो क्यों बोल रहे हैं कि आप जब दूर रहेंगे, घर के थोड़ी थोड़ी दूर हो जाएंगे, तो आपका खाना पीना बदल गया, आपका खाना पीना बदल गया था, आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बदल गया,
जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई, इनब्रीडिंग नहीं होगी जो हो जाती है,
ठीक है। हाँ। तो वो तो फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ से आया है। पर आज की डेट में तो आप फॉलो नहीं कर रहे सब, आप ढूंढते तो मेरा ही गोत्र मेरा ही कास्ट यहाँ से आ जाए, अच्छा नक्षत्र अलग है। तो अब आपके दिमाग में आप देख रहे हो कि उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, कि एक आंध्रा में रहने वाला बंदा अगर नॉर्थ इंडिया में शादी करे तो बहुत अच्छा था।
आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन लोग अपने गोत्र में भी शादी कर रहे हैं।
वो गोत्री तो देखते हैं कि गोत्र बदल की शादी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बस, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है। आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाले लोग दिल्ली के अंदर ही शादी कर रहे हैं।
बिल्कुल। हाँ,
आप तो ज़्यादा दूर नहीं हो, आप तो सेम फूड खा रहे हो।
हाँ,
आप तो सेम ही डीएनए डेवलप करोगे जिस तरीके से आप खाना खा रहे हो, तो फिर आपको नाड़ी दोष क्यों नहीं होगा। Now you understand. गोत्र कहां से आया? गोत्र का मतलब जहां पर किसी की गाय बांधी जाती है. तो जिस परिवार की गाय एक जगह बांधी जाती थी, तो अलग अलग गायों के तबेल जो प्लेसेस थे उनको गोत्र कहा गया. तो अब तो ना किसी के पास गाय है, डिस्टेंस आपने मानना नहीं है, तो देन वाई यू आर मैचिंग कुंडली? कहां से मैच कर रहे हो कुंडली?
तो फिर अब व्हाट कैन वी डू इन दी एब्सेंस, या फिर अब ये मान लो ये फॉल्सिफाइबल हो गया है कुंडली मैचिंग और शादियां काम नहीं कर रही हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर से लोग ऐसा क्या कर सकते हैं अपने आप को? देखो, जो ऐसे भी लोग होते हैं, मेरे पापा एक कहावत कहते हैं कि देखो हिंदुओं में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन जो सरदार लोग होते हैं वो एक संडे देखते हैं और शादी कर लेते हैं.
Absolutely.
And it absolutely works out for them. Now there are numerous people in the world, Christian है, Muslim है, और समाज के लोग हैं दुनिया भर में जिनके लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर केवल और केवल न्यूयॉर्क के अंदर एक बरिस्ता पे कैफे पीते हुए टुडे जोडियाक हॉरोस्कोप फॉर कैंसर देखने वाली लड़की होगी. मेजोरिटी समाज वो भी नहीं देखता. भाई आज चर्च लिया, शादी कर दी.
बिल्कुल. मेरे खुद के फ्रेंड्स सरदार हैं.
हाँ,
देखो रहे कि संडे फ्री हैं सब, शादी करते हैं.
ठीक है,
दिस इज हाउ इट इज डिसाइडेड ना, गुरुद्वारे में पूछ लिया.
सो देन आई गेस द क्वेश्चन मूव्स रियली टू द प्रॉब्लम इज, क्योंकि अब हमारे फेथ में आ गया है, अब मुझे पता लग गया जी मेरा मून ये है, लग्न ये है, सन ये है, मैं फंस गया हूँ. क्योंकि अब मैं आई नो इट वॉज बेटर टू बी इग्नोरेंट एंड जस्ट डू वॉट आई वॉन्टेड.
और अब आपको अगर इग्नोरेंट रहते तो ज्यादा शायद खुशी रह जाती कि यार नहीं पता तो ज्यादा सुखी.
अब देखो कोई भी हिंदू परिवार है और अब वो अपनी जिंदगी जी रहा है, सडनली अब आप जब अपनी जिंदगी जी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है.
हाँ जी.
सडनली कोई आके बोलते हैं घर के पंडित, आप तो इस तरह से मांगले को आपकी ये दशा चल रही है. अब आदमी ना भी माने एकदम पे संकट में आ जाएगा. ओ हो, इसलिए मेरे साथ बुरी चीजें हो रही है. एंड देन द साइकिल स्टार्ट्स.
विनम्र क्या है ना, हम लोगों ने रिवर्स इंजीनियरिंग चालू कर दिया. पहले क्या था, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं था, अभी क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग. तो आई विल स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन कि जो लोग सरदार फेरे लेते हैं संडे को मुहूर्त देख के, ठीक है, तो सरदार जो है ना वो गुरु की कॉम है. वो अकेला रिलीजन है जो गुरु पे बना, और गुरु ना भरोसे पे काम करता है, फेथ. उनके धर्म में, सिखी के अंदर धर्म फेथ से बड़ा कुछ है ही नहीं. मतलब गुरु बोलता है लड़ना है, मतलब लड़ना है. तो गुरु के वचन पे सब कुछ है. और एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, सिखी के ऊपर वो पॉडकास्ट है, क्योंकि मेरे को रिलीजन पे पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं. तो उस पॉडकास्ट के अंदर ना एक बहुत अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन थी कि जब अहमद शाह अब्दाली आया तो पेशवा ने उसको चिट्ठी लिखी कि हमारे साथ ना संधि कर लो. अब्दाली बोलता है मेरे को संधि करनी नहीं आती, लड़ने आ जाओ पानीपत. और पेशवाओं को हरा दिया. उसके ठीक 6 महीने बाद ना अब्दाली चिट्ठी लिखता है किसको, सिक्स को, कि मेरे को संधि करनी है, डर के मारे. क्योंकि अब्दाली के सोल्जर्स ने उसको बताया कि यार ऐसा है, ये तो भूत की तरह लड़ते हैं, इनके हाथ पैर कट जाओ तब भी लड़ते हैं, ये पागल लोग हैं, ये देखते नहीं है एक है सौ है, ये इनके अंदर कोई भूत वूत, इनके अंदर कोई तिलिस्मी आत्मा आती है, जिस तरीके से लड़ते हैं इनके साथ नहीं लड़ सकते हम. अब्दाली डर गया था देख के. तो लेटर लिखता है किसको, सरदारों सिखिज्म को, कि मेरे को संधि करनी है. सिक्स बोलते हैं हमें संधि करनी नहीं आती, लड़ने के लिए आ जा. पता है अब्दाली ना घोड़े बैठ के नहीं गया वापस, क्योंकि उसको डर था कि अगर घोड़े बैठे हुए देख लेंगे तो इनको पता चल जाएगा मैं हूँ, मेरे को मार देंगे. इतना डर किस कौम से जिसने गुरु की बात पे भरोसा करा. गुरु जो है ना वो सबसे ब्रिलियंट प्लैनेट इसलिए है क्योंकि जिसको भरोसा हो गया ना जिंदगी में जिस चीज पे. और धर्म ना, गीता भी बोलती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम. जिसको भरोसा नहीं आया ना, आपको जिस चीज में भरोसा आ जाएगा इस पूरी दुनिया में, एक दीवार पे, एक पत्थर पे, एक मोर के पंख पे, जिस पे आ जाएगा वो काम कर जाएगा. अब जब ये सरदार लोग गुरु ग्रंथ साहब के 4 फेरे ले रहे होते हैं तो बहुत भरोसा होता है. ऐसा नहीं सिखिज्म में डिवोर्स नहीं है, सब जगह हर जगह पे है, लेकिन जो लोग उस भरोसे के साथ उसको मान लेते हैं काम कर जाता है. पर जब आप टेक्निकली चलते हो, और आपका दूसरा जो क्वेश्चन है कि पहले तो मेरे को नहीं पता था, अब मेरे को पता लग गया तो मेरे को तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है. और अब पंडित जी ने बोला कि जी मांगलिक हो या फिर पितृदोष है या कोई और प्रॉब्लम है, अब एक तो बुरा टाइम चल रहा है और पहले पितृदोष नहीं था, अब पितृदोष आपको याद आ गया जब काम ठीक था, पहले याद नहीं था मांगलिक, अब मांगलिक याद आ गया। तो जब ये ट्रबल्स आने लगते ना, तो आपको अपने अंदर अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मेरी ऐसी हालत क्या। अपने आप से अगर आप सवाल नहीं करोगे ना, अपने आप से संवाद नहीं करोगे अकेले में बैठ के डेली एक आध घंटा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और स्पेशली सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करोगे ना कि व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या है, जब सवाल नहीं करोगे ना तो जवाब नहीं मिलेगा। तो जब कोई ये बोल रहा हो ना कि पितृ दोष है, आपके पितर आपका बुरा क्यों करना चाहेंगे? कभी सुना है कि किसी बाप ने किसी बेटे का बुरा करा? अगर आप हर अमावस पे उनको याद करते हो, अगर आप दिन भर में पता नहीं कितनी बार, जो मैंने कितने सारे ऐसे लोग देखे जो अपने फादर को जो चले गए हैं कई सालों के, उसके भी कई बार याद कर लेते हैं दिन में, अपने दादा दादी को याद कर लेते हैं। अगर आप उनको याद कर रहे हो, अगर आप उनके लिए कभी कभी डोनेशंस कर देते हो, आप अमावस पे उनके लिए कुछ दे आते हो, और हर धर्म के अंदर दिया जाता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं टिपिकल नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, उनके वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध होता है, उनके वहाँ पर भी उसी टाइप का एक मंथ आता है जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके वहाँ पे,
एबोरिजिन्स
एब्सोल्युटली। तो उस टाइम पीरियड पे वो खाना बाहर का नहीं खाते, नए कपड़े नहीं करते, मेरे को तो ये श्राद्ध है, हम भी तो यही कर रहे हैं ना श्राद्ध में। तो आपके पितर आपके लिए कभी बुरा नहीं करेंगे, एज लॉन्ग एज आप कुछ तो ट्रेडिशन फॉलो करो, आप उनको कभी तो याद करो। आपको उन्होंने इतनी सारी चीज़ें दी होंगी, आपको लीनेज दिया है, ट्रेडिशन पास ऑन किया है, पितृदोष खत्म होता है अमावस के, उससे
अपनी ब्लड लाइन में दुख कम करा है, तभी तो आप यहाँ बैठे हो, आराम से बैठे हो।
एब्सोल्युटली। और जितना प्रॉब्लम उन्होंने झेला होगा, आपने उसका 10% भी नहीं झेला होगा।
करेक्ट।
तो पितृदोष ना अमावस पे डोनेशन से खत्म होता है। कोई भी पितृ, मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, और कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ना अभी, जो कि फोरम्स के अंदर हैं, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर हैं, ईमेल्स पे हैं, जहाँ पर एक सिंपल सा, मतलब एक विनम्र, एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन ना लाइफ में, बहुत सिंपल सा लाइफ बदलता है। लाइक हमारे पास एक केस था, एंड ये दिखाता है फेथ क्या करते हैं। दो प्रॉब्लम्स हैं, दो अलग अलग ईमेल्स आए हैं, दो अलग अलग कंसल्टेशंस हुए हैं। प्रॉब्लम एक है, एक घर में वायलेंस है, एक मेल घर की फीमेल्स को मार रहा है, दूसरे उसमें भी लगभग सेम प्रॉब्लम है। तो ट्रेन तो मैंने ही करा है ना दोनों एस्ट्रोलॉजर्स को, तो दोनों ने एक ही रेमेडी दिया, एकादशी का व्रत करना है मैम, और उसका प्रोसीजर बताया कैसे करना है, क्या देना है, जो कि एकादशी व्रत का प्रोसेस।
सॉरी एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर कोई किसी को मार रहा है तो व्रत करने से मार पिटाई थोड़ी खत्म हो सकती है?
बिल्कुल ठीक, आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई किसी को मार रहा है तो घर में चिड़चिड़ापन है, और ऐसे नहीं कि एक तरफ से मारे, आपस में लड़ रहे हैं।
अच्छा, ओके,
दिस इज लाइक
नॉट डोमेस्टिक अब्यूज, देयर जस्ट गोइंग एट इट, दोनों एक दूसरे को मार,
जैसे कि दो लोग घर में रह रहे हो और चिड़चिड़े हो गए हो, और दोनों कभी मर्जी चालू हो जाते हो, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। उसमें से जो पहला वाला बंदा जिसने भरोसा करके फास्टिंग करा, उसका ईमेल है, उसका फीडबैक है कि सर रेमेडी वर्क लाइक ए मिराकल। 6 महीने बाद उसका फीडबैक आया कि अब 6 महीने हो गए हमारे घर में लड़ाई नहीं हुई, हमारे घर में पुलिस नहीं आई है, हमारे घर में ये पहले जो चलता था अब धीरे धीरे थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, वे थैंकफुल, वो थैंकफुल ईमेल था। दूसरे बंदे का ईमेल नेक्स्ट डे आया कि ये क्या रेमेडी है कि एकादशी का व्रत कर लो, ये तो कोई भी बता देता। नाउ द थिंग इज देयर इज ए गैप ऑफ फेथ इन बोथ चार्ट्स। एक बंदे ने करा है उसको रिजल्ट है, एक बंदे ने बोला है कि नहीं जी ये तो कोई भी बता देते एकादशी का व्रत मेरे को, बिकॉज उसके दिमाग में रेमेडी का मतलब है कि मैं उसको कुछ, या कंसल्टेंट उसको कुछ ऐसा बताता कि कोई महंगा स्टोन, कोई ऐसी पूजा या कुछ भी ऐसा जो कि उसके पैसे खर्च होते हैं एक्स्ट्रा कहीं पे जाके, और तब जाके उसको शायद सुकून आ जाता। वो नहीं बता पाया या उसका एक्सपेक्टेशन गलत था, गलत जगह पे आई, बिकॉज हमारा पॉलिसी है वी विल नॉट नेवर सेल पूजा, वी विल नेवर टेक डोनेशंस, वी विल नेवर डू सेल आउट जेम स्टोन, हमने करना ही नहीं है। हम बोलते हैं आप अपने आप करो, क्योंकि जो पूजा आप भगवान के सामने खड़े होकर 10 मिनट में करोगे उसका ज़्यादा असर है बजाय कि कोई और आपके लिए करेगा। तो जब ये बात इन लोगों को समझ में आती ना, देन द स्टार्ट कि नहीं, फिर उनको उसी टाइप का स्टोर मिल जाता है तो 1.5-2 लाख रुपये लेता है, स्टोन भी बेच देता है, पूजा भी करवा
देता है, छोटी बड़ी बात कह देता है जो उनको चाहिए होती है एग्जैक्टली उस वक्त।
एब्सोल्युटली।
मेरा एक दोस्त है और वो एक लड़की से प्यार करता था बहुत ज़्यादा, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जुदा नहीं रह सकते थे। कई कई दिन तक बाहर रहते थे, साथ में रहते थे, घूमते रहते थे। उस दोस्त के घर वाले बड़े परेशान हुए, उन्होंने बोला कि यार ये तो नहीं, तो ही इज़ लूजिंग हिज हेल्थ, ठीक है, इज कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड एंड ही इज हाइडिंग सम काइंड ऑफ अ डीप पेन दैट इज नॉट शोइंग। तो उन्होंने भाई पंडितों से निकलवाई ली कुंडली किसी भी तरीके से लड़की की, उससे बहाने बहाने में पूछ लिया।
हाँ जी।
और पता लगा लड़की का मार्स इन फिफ्थ हाउस है। तो उसने मेरे को वर्बेटिम बताया कि पंडित जी ने बोला कि ये लड़की से तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हालांकि आपके किनके उनके 36 में से कितने 28 या 30 गुण मिल रहे थे।
हाँ जी।
योनी मैच भी था, ऐसा भी कुछ था।
वो कुंडली मिलान की पार्ट है,
ठीक है। हाँ, तो बोले इसका मार्स इन फिफ्थ हाउस है, इसके तो बड़े रिलेशन रहेंगे, बहुत बुरा सिस्टम होगा।
अच्छा।
इट वॉज नॉट अ बिग फैक्टर इन दे इवेंचुअली ब्रोक अप, लाइक इट डिडंट वर्क आउट। पर मैं सोचता हूँ कि यार एक वक्त तो है कि मेरे को अंदर से क्या फील हो रहा है कि हमारे रिश्ते के बारे में, फिर जब मेरी असली में फट रही है मुश्किल चीज़ करने के लिए, तो मैं यहाँ वहाँ अपना टाइम वेस्ट करके कभी मार्स एंड फिफ्थ हाउस ढूंढूँ, कभी केतु, इन सब वट एवर। तब मुझे लगा यार कि ये आदमी कितना वल्नरेबल हो के किस स्टेट में चला जाता है कि जहाँ पे वो एक किसी अपने पार्टनर के जिससे उसको एक डिसीजन देना है उसके बारे में, उसके बर्थ चार्ट सपोजिट प्लैनेट, एक प्लैनेट के बेसिस पे वो इतना उसको परेशान किया जा रहा है।
जो आपने बोला ना वल्नरेबिलिटी, हाँ। आपको ना आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हो जो आपने पहले नहीं करी,
हाँ।
और दूसरा ना वो रिवर्स करना आसान नहीं होगा हिंदुस्तान में एटलीस्ट।
सो व्हाट डू यू मीन, लाइक
कि आप यहाँ पे शादी कर रहे हो तो आप शादी में पूरी जान लगाओगे,
हाँ।
आपको पैसा खर्च होगा,
भारतीय तो लगाते हैं पूरी जान, हाँ।
ठीक है, आप उससे बैक ऑफ इतनी इजीली नहीं कर सकते,
हाँ।
क्योंकि अब आपके लिए वो ईगो इशू भी बन गया कि यार डिवोर्स ना हमारे उसमें देखा नहीं जाता इस तरीके से, और उसमें खर्चा भी बहुत है, टेंशन है, फैमिली में विल गेट इन्वॉल्व, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल। मतलब कितने कपल्स हैं जो सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं कि बच्चे हैं, अब हो गए हैं देन वी कांट गेट सेपरेटेड, राइट, यही तो ट्रबल है ना। बाहर इजिली लोग इमोशनली डिटैच हो जाते हैं देन दे गो आउट। आपको कोई बंदा चाहिए जो आपको ये बताए कि ये सही है या गलत है, बेसिकली सामने वाला बंदा। तो आपको ना, मैं जैसे कि मैं आपको बीच में बोलता नमेट्स, पहली चीज़ें आपको पता होता है बंदा कैसा है, वो मेरे लिए कैसा रहने वाला है। रेड फ्लैग्स ना बहुत जगह आने लग जाते हैं, स्टार्टिंग से आते हैं। आपकी इच्छा है आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, तो आप उनकी फैमिली ना देखो, उनका बैकग्राउंड ना देखो, तो वो रेड फ्लैग्स आने लग जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको सही में कोई बंदा चाहिए होता है जो आपको लॉजिकली ये बताए कि देख, लॉजिकली एंड इमोशनली दिस इज़ राइट थिंग टू डू। जी, अभी हो सकता है बुरा लगे, या हो सकता है अच्छा अब लग रहा हो, या अभी डर लग रहा हो, पर इवेंचुअली ये बहुत अच्छा रहेगा आगे जाके। उसका क्लासिकल केस है, एक लड़की थी यूएस के अंदर, यूएस में एक लड़की से, एक और लड़के से मिली, इन दोनों इंडियंस, और इसको शादी करनी है दोनों के। ना जो लड़की है उसका फैमिली बैकग्राउंड महाराष्ट्रियन है, प्रोफाइल अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लड़का नॉर्थ इंडियन है। इसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा नीचे है, इसका जॉब भी कंफर्म नहीं है, लड़की है लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसका घर वहाँ पे यूएस में है, गाड़ी है, अच्छी पोजीशन पे है। अब इसका ना ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हुआ इन द सेंस कि शादी से कुछ टाइम पहले इसका पैर में इंजरी हुई, इसको यूएस छोड़ना पड़ा, और इसने यूएस भी इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि जॉब चली गई, जॉब इसलिए गई क्योंकि उस दिन शादी की शॉपिंग के लिए इसने छुट्टियां ले रखी थी। इसको अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ बेच के वापस इंडिया आना पड़ा। देन शी केम टू मी कि मेरे को ये रिलेशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स राइट नाउ। मैंने बोला लड़के का चार्ट चाहिए मेरे को, मेरे को और किसी का चार्ट नहीं चाहिए। अब जो लड़की का चार्ट है ना, मेरे को नहीं पता आपको टेक्निकली कितना पता है, उसके नवांश के लगन का मालिक आठवें घर में है, विच मीन्स कि जो भी पार्टनर इसकी जिंदगी में आएगा उसके लिए ये एज ए पनौती काम करेगा।
ये लड़की,
ये लड़का जिसके साथ जाके छू लेगा ना, जिसको इसके साथ अटैच हो जाएगा, बेसिकली उसका वही हाल होना है जो इस लड़की का हुआ, कि इसकी पैर टूटा, जॉब गई, यूएस भी छोड़ना पड़ा जहां कभी परमानेंट होने वाली थी।
तो इज देयर नो वन फॉर दिस गाय देन?
अब वो लड़की ने इसी को क्यों पसंद करा, या ये लड़की इसी पे क्यों अट्रैक्ट हुई, क्योंकि उसके चार्ट के अंदर एक रॉयल प्लैनेट सन सेवेंथ हाउस से देख रहा था, तो उसको हमेशा ऐसी ही लड़की मिलेगी जो उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर होगी। अब ये लड़की के चार्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशंस बाकी के थे, मैंने बोला देख ये लड़का ना, तो इस लड़की का कंसर्न पता है क्या था, लड़की ने पूछा कि अगर मैं उसको छोड़ दूंगी तो क्या उसको कोई और मिलेगा। सी शी इज वेरी जनरली कंसर्न्ड। मैं बोला हाँ बिल्कुल, उसको ऐसी ही लड़की मिलेगी जो उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी होगी और उसकी लाइफ में एज ए बैड लक की तरह काम करेगा ये बंदा उसी पे एज ए पैरासाइट काम करेगा। अगर ये शादी कर लेती शी वुड हैव बीन इन एक्सट्रीमली बैड स्टेट, बट मेरे को लगता है कि उसका वो पैर टूटना, छुट्टी लेना इतना ब्रिलियंट साबित हुआ क्योंकि उसकी दशा नहीं थी अभी शादी की, लेकिन लड़के के बैड लक ने पूरा काम करा। अभी नाउ शी अंडरस्टूड द मोमेंट आई क्लियर दिस टू हर एंड आई एक्सप्लेन फ्यू मोर थिंग्स कि ये लड़का ऐसा होना चाहिए, इसकी ये हैबिट्स हैं, इसका ये प्रोसेस होना चाहिए, तब उसका दिमाग खुला। द मोमेंट वो लॉजिक आ गया ना, आपको संतुष्टि मिली, यू गेट ए क्लोज अप कि ये इसकी वजह से हुआ और ये बहुत अच्छा हुआ है, दैट्स द मोमेंट यू रियलाइज कि हाँ ठीक है अब मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। सो दैट हैपन एंड देन आई डिड। अभी उसका सेकंड फीडबैक आ गया कि मैंने उसको बताया देख ये लड़का मिलेगा यहाँ पे मिलेगा ऐसा होगा, दैट फीडबैक केम, नाउ शी इज हैप्पी ना। तो आपको ना ये देखना है कि जो पार्टनर के साथ मैं जा रहा हूँ उस समय मैं जितना वनरेबल हूँ, मैं जितना कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि आप घर वालों के सामने तो लड़ जाओगे, आप कहोगे नहीं मेरे को यहीं शादी करनी है, हो सकता है घर वाले आपको प्रेशर कर रहे हो कि यहीं शादी करनी चाहिए, बहुत अच्छा लड़का है, बैकग्राउंड आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हो, उस टाइम पे ना एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको समझना चाहिए चार्ट देख के कि ये कॉम्बिनेशन है, ये लड़के का प्रोफेशन होना चाहिए, ये आपको मिलना चाहिए। एक लेडी ने मुझसे पूछा कि हस्बैंड अब्यूसिव है, अब्यूसिव इंसान गालियां देता है और प्रॉब्लम्स हैं, उसने मेरे को बोला कि सर मैं इसी घर में रहूं या छोड़ दूं, उसकी ना दशा आगे सुधर नहीं रही और ख़राब हो रही है। तो मैंने उसको मेल पे रिप्लाई करा, मैंने कहा यस यू शुड लीव इट राइट नाउ क्योंकि थिंग्स विल गेट वर्स। जहाँ पे मेरे को लगता है ना कि जो चीज़ मैं अपनी सिस्टर के लिए मैं नहीं करूँगा, एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली आई हैव ए कज़न हु गॉट मैरिड एट 52। I have a cousin.
No, I heard that.
Who got married at 52. लेकिन उसने मुझसे पूछा ना कि should I marry at this age? बोला yes, go ahead. You have the right dasha. तो
and she's happy?
Absolutely. I mean, she is having the best time of her life. Because आपको ना वो moment pick करना कि जब उसकी life में दशा ठीक है. And that's her second marriage ना कि जो काम मैं अपनी सिस्टर के लिए नहीं बोलूंगा ना, आई ऑलवेज थिंक कि ये ना कोई भी बंदा आपके पास आता है मत मांगने, आपको उसको जेन्युइनली हेल्प करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा।
लेट मी आस्क यू दिस दीपांशु जी, देन अब मैं 52 साल का हूँ और मैं वेट करता रहा शादी की, कुछ भी कारण नहीं हो पाई, ठीक है आपके कजन के जो भी रीजन रहे हो, अब मान लो मैं ऐसी कोई एज पे पैदा हुआ हो जहाँ पे जो भी दशा है वो सही चल रही थी, फाइनली जब माई केम ऑफ मैरिज एज दशा खराब हो गई, इस चक्कर में जिंदगी थोड़ी रुकी जाएगी, तो लोग तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज करें कर ही लेंगे शादी।
हाँ यू विल गेट द गुड एंड बैड, आई मीन मैरिज इज अ फ्लेवरफुल मैरिज ना,
हाँ
उसमें अच्छा टाइम पीरियड आएगा, बुरा टाइम पीरियड आएगा, पर कभी भी वो इतना आउट ऑफ सिंक नहीं जाएगा कि आपको दुख आने लग जाए। ऐसा कोई कपल नहीं होता ना विनम्र जो लड़ता नहीं है, हर कोई लड़ता है, और लड़ाई नहीं है तो मतलब शादी नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ दी प्रोसेस। आप दोस्त से भी लड़ते हैं, वाइफ से भी लड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं,
राइट
लेकिन वो कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए ना कि एक्सट्रीमली लो लेवल लड़ाई होने लग जाती है, वो कभी नहीं होगा। अगर आपके चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व होना है, या फिर वाइफ ने या सेपरेशन दिखाई दे रहा हो, या फिर आपको ऐसे दिखाई दे रहा हो ये बंदा शादी के लिए नहीं है, इट्स नॉट अ मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ ए चार्ट, आप उस बंदे को बोलो कि देख यार तेरे चार्ट में शादी नहीं है, क्योंकि आपका बेस चार्ट तो कभी नहीं बदलेगा ना, बेस चार्ट तो हमेशा सेम रहेगा, दशा आएंगी जाएंगी, तो उनके चार्ट में शादी, फर्स्ट मैरिज वॉज बैड, सेकेंड मैरिज वॉज गुड, सो सेकेंड मैरिज शी इज वर्किंग आउट, पहली मैरिज नहीं काम करी, तो कई बार लोगों की दूसरी मैरिज भी खराब होती है,
राइट,
क्योंकि आपका बेस खराब है, बेस चार्ट खराब है।
जो अब यूथ देख रहे हैं फिर तो वो सोचेंगे यार एक काम करते हैं, फर्स्ट डेट का भी दशा और मुहूर्त और होरा वगैरह देख के जाते हैं, लाइक वी एंटर दैट
स्टुपिडिटी आई थिंक।
नहीं
नहीं, बिकॉज़ अगर आप हर चीज में ज्योतिष इन्वॉल्व करने लगेंगे ना, और आप इतना सभी एक ब्रीफ आइडिया रखना चाहिए कि ये मेरा चार्ट है, मेरे को इस टाइप का पार्टनर आना चाहिए, बट देन यू डोंट गो अहेड एंड प्लान माइक्रो मैनेज थिंग्स, बिकॉज यूनिवर्स में जब आप प्लान करोगे ना कि ये इस दिन होगा, उस दिन कभी नहीं होगा, बिकॉज वो यूनिवर्स का नेचर नहीं है। वो हमेशा उससे ज्यादा पहले हो जाएगा या बाद में जाएगा या पता नेचर बदल देगा।
एज फार एज मैरिजेज आर कंसर्न, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनके नाम बदल के उनकी कुंडलियाँ मैच करा ली जाती हैं।
हाँ जी,
मैं कोरा पे एक दिन पढ़ रहा था बाय चांस, मैं किसी और चक्कर में मैं कुछ और पढ़ रहा था कोरा पे क्या होता है, रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं।
हाँ जी,
तो किसी ने लिखा होता है मेरे और मेरे हस्बैंड के जीरो गुण मैच करते हैं लेकिन हमारी बड़ी अच्छी शादी है, लाइक व्हाट।
हाँ, गुण काम नहीं करते।
और दो तीन और मैंने ऐसे पढ़े हैं कि टेक्निकली ऑन पेपर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम लोग बहुत इनकम्पैटिबल है बट वी आर लाइक अमेजिंग।
तो इफ यू आर मैचिंग, इफ यू टॉकिंग अबाउट गुण, गुण काम नहीं करते।
Okay.
क्योंकि वो लाइफस्टाइल ना हमारा रहा है ना हम उस टाइप के लोग रहे हैं अब, तो जो हम नहीं हैं और उसको हम, आप बोल रहे हो कि हम, मैं इस वैदिक काल का प्रोसीजर यूज करूंगा अपने इस लाइफस्टाइल के साथ, तो सर आपको तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए था।
आप सुबह 11 बजे नेटफ्लिक्स देखते हुए ये बात फोन पे अलग यूट्यूब पे लगा के देख रहे हो, सही कह रहे हैं शादी के बारे में, तो फिर आप डिजर्व नहीं करते।
एब्सोल्युटली सर, वो इतनी ईमानदारी तो अपने आप से रखनी चाहिए ना।
तो फिर एज फार एज, अब ठीक है, वन हैज़ टू फाइंड अ पार्टनर, वन हैज़ टू इवन लाइक सी समवन कि उनके लिए वो मेरे साथ कंपैटिबल है नहीं है, मतलब कैसे बोले जाएंगे यार आप अपना चार्ट दे सकते हो जरा सा, थोड़ा सा जरा मेरे को एक्सटर्नल सर्वे करना था कि आप मेरे लिए सही हो या नहीं सही हो, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन पीपल आर यूज टू हैविंग।
आपको एटलीस्ट चार्ट इज अ रिक्वायरमेंट है, और सेकेंडली ना मैंने बोला ना कि आपको ना रेड फ्लैग्स आने लगते हैं, आपको देखने लगता है आप इस बंदे से मिलने के बाद मेरी लाइफ ऊपर जा रही है
या नीचे जा रही है,
ये एक्सट्रीमली, ये बंदा मेरे को इससे मिलने के बाद मेरे को ड्रेन हो रहा है या मेरे को खुशी महसूस हो रही है, ये तो आप किसी से भी मिलकर बता सकते हो ना। अगर आप कोई भी बात अपने पार्टनर के सामने मुंह पे नहीं बोल सकते, आपको लग रहा है कि ये ऑफेंड हो जाएगा, तो पार्टनर कभी होता ही नहीं कि वो जो ऑफेंड हो जाए, क्योंकि आपको उसके साथ जिंदगी भर रहना है, और जिंदगी भर रहने के लिए ना आपको बहुत क्लियर होना पड़ता है कि यार ये बंदा राइट है।
शादी ना होने के लिए टिपिकली प्लैनेट्स या हाउसेस कौन से ऐसे होते हैं जो दर्शाते हैं इस चीज को?
नवांश का लगन आपकी पूरी शादी दिखाता है। अगर आपके नवांश के लगन में शनि या बुध आ जाए, केतु आ जाए, और ये प्लैनेट्स ऐसे हैं जो नवांश के लगन को कंप्लीटली इसके अंदर शादी की इच्छा खत्म कर देते हैं,
बुध भी,
शनि, बुध और केतु,
ओके,
और इन तीनों के साइंस, लाइक अगर स्कॉर्पियो राइज कर जाए, स्कॉर्पियो से केतु साइन,
वर्गो हो जाए, जैसे
वर्गो आ जाए, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस आ जाए, ये साइन आ जाए, एंड देन साथ में मरकरी भी आके बैठ जाए, केतु भी आके बैठ जाए, देन यू नो कि ये ना शादी में बहुत डिले है, ये शादी जल्दी नहीं होगी। सैटर्न होगी ना तो उसको शादी मजबूरी में करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी। सैटर्न हमेशा नवांश के लगन में जबरदस्ती शादी करवाता है अगर उस पर विश्वकर का एस्पेक्ट आ जाए तो। इसी तरीके से जुपिटर आ जाए तो जुपिटर ना इज पब्लिक, जुपिटर शादी में तो इंटरेस्टेड होता है समाज के लिए, पर वो कभी भी सेक्सुअल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता। आप देख लीजिएगा जिसके भी नवांश के लगन में जुपिटर आएगा ना, उसको मैरिड लाइफ में सेक्सुअल इश्यूज आने हैं।
क्या इनफर्टिलिटी वगैरह के या फिर लाइक
इनफर्टिलिटी और मल्टीपल मैरिजेस की एक से सेटिस्फाई नहीं होना। जुपिटर को हमेशा वहां पे इश्यूज आते हैं। उसके अलावा अगर मार्स आ जाए, मार्स के साथ सैटर्न आ जाए, कोई मैलेफिक साइन में मार्स आ जाए, तो मार्स का ना कोप शादी के अंदर आना है। आपको पता है कि इन दोनों ने लड़ना है शादी के बाद, इस बंदे का काम है शादी का लड़ना। कुछ दिनों पहले की बात है, ऑफिस के अंदर दो लोग थे तो एक बंदे ने बोला, मार्स सैटर्न उसके नवांश के लगन में था, बोला बीवी कितना मारती है,
खुल के पूछ लिया आपने?
मेरा काम है ये, अगर मैं नहीं पूछूंगा, सी अगर मैं नहीं पूछूं देन आई विल नॉट, मेरे को कैसे कंफर्म होगा नवांश की लगन यही है?
आप पूछ लो सर, नवांश की लगन यही है आप ये?
तो मेरे को याद है एक ना ऑफिसर आए थे, तो उनको बहुत शो था, पॉम्प था कि साथ में इतने लोग आए हैं ये। तो जब वो केबिन में पहली बार आने बैठने से पहले ही ना मैंने उनसे पूछा मैरिड लाइफ कैसा है आपका, तो एंड ही दैट वाज अ मैं आई न्यू कि ये पॉइंट पे ना देयर इज अ वेरी वीक स्पॉट। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें वो नहीं पूछती मुझसे, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं पूछता उससे, सर आई नो कि मैरिज क्या है। तो शनि मंगल अगर लगन में है ना तो बोलता है कि सर शादी होने में भी 2 महीने हैं पर ना डोमिनेटिंग है वाइफ। तो मैंने कहा रुक जा, भी पिटाई पिटाई भी चालू होगी क्योंकि ये होना है, यू कांट अवॉइड इट।
सो लेट्स से किसी की हो गई है,
अच्छा जी,
और अब वो देख के उनके हार्ट में पैल्पिटेशन हो गई ऊपर नीचे, हाय हाय मेरे हस्बैंड का तो ये जुपिटेरियन ऐसा है या जो भी कुछ है,
तो उस बंदे को पता होता है कि ये मेरा हस्बैंड ऐसा ही है या वाइफ ऐसी है।
Now that already it's happened, what can they do now? Say for example, जो भी आप बोल रहे हो कि ये सारे ऐसे combinations हैं जहाँ पे शादी problematic रहती है, people are already in those marriages, what can they do given this knowledge of Vedic astrology?
तो उसके लिए फिर remedies part आता है। तो सबसे first thing is precaution कि आप ना पहले से समझ जाओ कि यार ये मेरा chart है, this is what is supposed to happen, this is what I'm going to get। अगर ये acceptable है तो मैं शादी करता हूँ। आपको पहले कोई बता देगा शादी करना ये होना है, बाकी आपकी इच्छा है। अब ये तो कह सकते हो ना क्लाइंट को, बाकी आपकी इच्छा है आपके ऊपर, आपने करनी है तो गो हेड, बट डोंट कम अगेन कि मेरे को प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ कि देख हो जाएगी लेकिन ना डो नॉट कम बैक कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम होगा 110% बोल रहा हूँ प्रॉब्लम होगा। जिसकी हो चुकी है मैं बोलता हूँ उसके बाद ना वंस यू अंडरस्टैंड कि ये नेचर है, अब इसको काउंटर बैलेंस कैसे करना है, देन यू गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ रेमेडीज। कुछ लिमिट तक, कुछ हद तक, और स्पेशली जो पीक टाइम पीरियड्स हैं उन दशाओं के जहाँ पर वो एक्सट्रीमली ट्रबलसम होगा, वहाँ पर यू टेक प्रिकॉशंस, वहाँ पर यू डू स्पेशली स्पेसिफिक साधनास। तो सबसे पहला रेमेडी मैं बोलता हूँ शादी के अंदर है, शादी में ना समाधि की तरह रहना पड़ता है। मैं सारे जितने भी लोग मैरिज में आते हैं ना मैं बोलता हूँ शादी में एक समाधि, भगवान शिव जैसे रहते हैं ना, कुछ भी हो रहा हो समाधि में जुबान बंद आंखें बंद शादी अच्छी चलती है। तुम बोलोगे ये नहीं करो वो नहीं करो तो यू गेट इन दैट हैबिट,
बट सरेंडर अप टू अ पॉइंट,
सरेंडर अप टू अ पॉइंट एब्सोल्युटली, कि जहां तक आपको लग रहा है कि यहां तक ये चीजें की जा सकती हैं, तो कुछ चीजें अपने आप के अंदर बदलनी है, और जब आप बदलते हो तो आपके सामने वाला बंदा भी बदलता है। क्योंकि हमेशा ना नवांश चार्ट की स्पेशलिटी है, नवांश चार्ट ना सामने वाले पे भी काम करता है, तो आप जब अपने लिए उसको ठीक कर रहे हो ना वो सामने वाले को भी रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप सोचो मैं तो नहीं चुपाऊंगा, मैं ईगो बराबर रखूंगा, मेरे को पूरे पंगे देने शादी में, एंड सामने से रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्टोन पहन लिया है ना, नॉट गोइंग टू हैपन। आपको भी बदलना है जब दोनों तरफ से होता है, एंड दैट्स हाउ दैट्स व्हेन यू डू द नवांश रेमेडीज, डू द डोनेशंस, यू डू द व्रत, और ये सारे रेमेडीज के से उसका फिर शांति आनी चाहिए,
अलोंग विद जेनरली ट्राइंग टू टॉक टू द अदर पर्सन कि भाई हम कैसे काम कर सकते हैं इस पे, खुद व्यवहार चेंज करने के साथ साथ। वो भी तो
आप सी, आप जब मतलब शादी के लिए हमेशा बोलता हूँ आप ना दो काम करो, आप पहली चीज षष्ठी का व्रत चालू करो कि आप हर षष्ठी में सिक्स्थ तिथि जो होती है आप ना उस पर फास्टिंग चालू करो। आप जितना फास्टिंग करोगे ना एक सिक्स्थ पे करो एक इलेवेंथ पे, अगर दो करना है तो दोनों कर सकते हैं। आपके अंदर से ना फाइटिंग टेंडेंसी और जो प्रॉब्लम देखने की हैबिट है ना आपकी वो खत्म हो जाएगी, वो जो सॉल्यूशन चाहिए आपको मिल जाएगा। सब्र रखो, बहुत जनरल रेमेडी है बट इट वर्क्स। सेकेंडली आप एकादशी का फास्टिंग, षष्ठी और एकादशी दो फास्टिंग अगर आपने कर लिए इस तिथि में, क्या है ना विनम्र इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है, जितनी भी लड़ाई है ना हमारी अपनी जिंदगी में वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि सोल कुछ और चाहता है मन कुछ और चाहता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है ना एकादशी वाले दिन होता है, षष्ठी वाले दिन होता है, आप इतना काम कर लो बाकी का काम ऑटोमेटिकली होगा। सेकेंडली काम क्या करना है कि जब आपको समझ में आने लगता है कि अब मेरे को मैरिज को के लिए काम करना है, ब्रेन के अंदर आइडियाज आते हैं इन डोनेशन से, लाइक अगर मार्स है तो भुनी हुई मूंगफली डोनेशंस में दी जाती है, ये सारे काम शादी के टाइम पे भी करवाए जाते हैं कि किसी किसी की शादी के अंदर ये चीज़ें डोनेट करवाइए, मूफी डोनेट करवाइए, शूज़ डोनेट करवाइए, इसके गुलाब का इत्र छिड़कवाइए या परफ्यूम बॉटल सारे उसको देनी है। तो पहले अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो रेमेडीज़ करते हैं इस टाइप की। इन सब टाइप की रेमेडीज से होता क्या है कि यू गेट ए पीस, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं ना वो इवेंचुअली शट डाउन होते हैं। क्योंकि हमारे पास अब कितने फीडबैक्स हैं ना, जो लोग आके बोलते हैं कि हाँ ये काम करता है 110% काम करता है।
मैं तो सिर्फ इस बात पे ये सोचता हूँ कि लोग ऐसे भी सोच के बहुत वो होते हैं कि मैं अपने हाथ की रेखा देखते हैं यहाँ से कि मेरी तो जो है दो बच्चे होंगे, एक ऐसी खूबसूरत बीवी होगी मेरे, अरे मेरी लव लाइन तो टेढ़ी है हाथ की। डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से अपने फ्यूचर के रोमांटिक पार्टनर को क्या आभास करते हैं कि वो किस तरह होगा, या मतलब क्या बोलते हैं, सोचते हैं कैसा होगा। फिर ऐसी ऐसी किताबें हैं, लिंडा गुडमैन की किताब है शायद मैन आर फ्रॉम मार्स, नहीं एक फेमस किताब है मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है। उससे अब लोग बोलते हैं कि यार इसका तो लाइक मैरिज का प्लानट तो आदमियों के लिए वीनस होता है, औरतों के लिए मार्स होता है। आई कुड बी रॉन्ग, बट हाउ डू वी इवन नो कि कौन से प्लैनेट्स इन योर चार्ट आर मेंट फॉर रोमांस, सेक्सुअलिटी, पार्टनरशिप, मैरिज?
शुक्र का काम है क्रिएशन, शुक्र के पास ही वो जन्मा है, वो मेल हो या फीमेल हो। मार्स का काम था प्रोटेक्शन देना, जो कि पहले के जमाने में मेल फीमेल को प्रोवाइड किया कर सकते हैं। आप क्या करते थे, फीमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, मेल का काम था। तो वो मार्स का कारक लिया गया कि मार्स का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आज की डेट में तो दोनों बराबर हैं, दोनों जॉब्स कर रहे हैं, दोनों घर चला रहे हैं। देन आप अब डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हो कि मार्स मेल ही बनेगा, वीनस फीमेल बनेगा? अब तो दोनों बराबर कर दिए ना आपने। हाँ, अगर वुमेन इतनी डिपेंडेंट है कि उसको हर बार प्रोटेक्शन के लिए मार्स की जरूरत पड़ रही है, वो घर के बाहर नहीं जाती, घूंघट में रहती है, अगर आपकी उस टाइप की सोसाइटी है, ठीक है ले लीजिए मार्स, किसने मना करा है? आपके कारक इस का सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेटर, सिग्निफिकेटर क्या मतलब है कि ये इसको रिप्रेजेंट करता है, यही तो मतलब है। तो क्या आपको लग रहा है कि मार्स जो है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वीनस इज वुमन? आज के डेट में वुमेन ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर रही है मैरिज के अंदर? दे आर इक्वल, अब तो हर तरीके से इक्वल है, चाहे फाइनेंशियल आप टर्म्स में पूछो। तो पहली चीज, शुक्र ही कारक है शादी का, शुक्र कारक है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा स्मेल करता हूँ, मैं कैसा अपने को प्रेजेंट कर सकता हूँ। शुक्र इज व्हाट आई सी, व्हाट पीपल सी इन मी, टॉरस एंड लिब्रा। तो मैं लोगों के अंदर खूबसूरती देखता हूँ, लोग मेरे अंदर खूबसूरती देखते हैं, टॉरस एंड लिब्रा है। आप दुनिया को गालियां दोगे जुबान से, आपको पता है वापस मिल जानी है।
शिट, मेरे तो करियर खत्म।
ठीक है, टॉरस एंड लिब्रा है। अब शुक्र का काम अगर क्रिएशन है तो शुक्र इज बेसिकली योर लव लाइफ, शुक्र इज द वे यू ड्रेस अप, शुक्र इज द ग्रेस यू हैव इन लाइफ।
सो बाय सिंपली चेंजिंग द वे यू ड्रेस अप, विच इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर हैक इन साइकोलॉजी, जो बोलते हैं कि लड़कियों को कैसे पटाएं, लड़कियों को बोलते हैं कि आप अपने लिए खूबसूरत मर्द को कैसे आकर्षित करें।
हाँ जी,
सब कपड़े अच्छे पहनते हैं।
हाँ जी,
तो क्या वाकई में कपड़े अच्छे पहनना एक तरीका है शुक्र को स्ट्रॉन्ग बनाना?
आप कितने ग्रेसफुली ड्रेस हो सकते हैं, बोलते हैं ना ओल्ड मनी ड्रेसिंग, लाइक वो न्यू मनी ड्रेसिंग ना दिखाई देता है।
आप बताओ न्यू मनी ड्रेसिंग किस प्लैनेट का सिग्निफिकेटर है?
राहु।
आई वाज गोना से दैट, बहुत मैं स्ट्रीट स्टाइल के इवेंट पे गया, स्ट्रीट स्टाइल वाले उस पे जिसपे स्नीकर वगैरह पहन के आ रहे थे। मैंने रिसेंटली, मेरी एक दोस्त है मेरे साथ स्टाइल में काम कर रही है, मैंने कहा यार मेरे को अपना एस्थेटिक रिक्रिएट करना है, मैं ब्रांडम ब्रांडम चीज़ें पहन के थक गया हूँ, मैं भी वीनस की तरफ जा रहा हूँ जैसे। तो मैं और वो बैठ के बात कर रहे थे, कहती इस चीज़ पर ध्यान रख कि क्या एटर्नल है जो हमेशा चलता है, वॉट इज ऑलवेज देयर। कहती ये सब जो देख रही है ओवर साइज टी शर्ट्स, ये ओवर अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, बट ये बहुत टेम्प्रेरी है।
एब्सोल्युटली,
मेरे को लगा वाह यार। और वो खैर, वो भी शी इज ऑल्सो बिग फैन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो वो फिर उसने वो बोला नहीं कि ये वीनस है वो कुछ है, बट ओवरऑल इम्प्रूविंग योर वीनस इज कैन बी डन बाय इम्प्रूविंग योर क्लोथ्स इज व्हाट यू आर सेइंग।
इज इम्प्रूविंग माय क्लोथ्स, इम्प्रूविंग लैंग्वेज, लैंग्वेज प्लेज अ वेरी,
बट इज दैट नॉट मर्करी?
सो द वे यू स्पीक, मर्करीज थॉट, मर्करीज सोचता है, लैंग्वेज आपने बना लिया, द वे यू आर गोइंग टू आर्टिकुलेट, आप किस तरीके से बोलते हैं, आप देखिएगा कि जिनकी मतलब एक बहुत फेमस शायर हैं मुनव्वर राना जी, अगर आप उनकी पोइट्री सुनी हो माँ के ऊपर, और कमाल फारूकी उन्हीं के सॉरी मैं आई फॉरगॉट द नेम, एक मुशायरा था उसमें मुनव्वर राना जी थे, आईपीएस आईएएस बैठे हुए थे, तो उनको उन्होंने बोला कि अगर अफसर की तरह दिखना है तो अफसर की तरह बोलना सीखो, और अफसर की तरह बोलने के लिए उर्दू बोलना सीखो। तो जुबान जो है ना वो आपकी लीनेज है, आप जब बोलते हैं आप नहीं बोलते विनम्र, आपके पीछे के पुरखे बोल रहे होते हैं, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ना डेवलप होके हुई आई है, आपकी दादी नानी फादर मदर किस लैंग्वेज में बात करते थे वो आपकी भाषा में नजर आता है। मैं फोन उठाते ही ज्यादातर आपने देखा होगा मैंने आपके जो फोन है, हेलो सर नमस्कार कैसे हैं, मेरे को पता कि मेरे फादर ऐसे बोलते हैं, वो आपके पुरखे आपके पीछे बोल रहे होते हैं, आपकी जो भाषा है ना जितनी बेहुदा होती चली जाएगी घर के अंदर, जितनी तेज आवाज होती चली जाएगी उतनी ज्यादा ना आपका शुक्र खराब होता चला जाएगा, आपकी भाषा बहुत मैटर करती है।
बेहुदा मतलब?
बेहुदा इन द सेंस कि जिस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
हम बहुत शुद्ध भाषा में अगर गाली गलौज का प्रयोग करते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा शुक्र खराब हो रहा है?
गाली गलौज आपस में दोस्तों में चलती है जो एक लैंग्वेज है,
हाँ,
पर सपोज कीजिए कि एक आपका टोन बदल गया या कोई ऐसा वायलेंस वाला लैंग्वेज है कि जिस
बिना वायलेंस के सिर्फ गाली गलौज में बात करना,
एग्जैक्टली, तो आपकी अगर भाषा खराब है ना, तो मेरे को आप देखो पाकिस्तानी सीरियल्स उठाइए
कितनी बढ़िया भाषा बोलते हो,
आपको मजा आता है ना सुन के वो भाषा।
अभी पैरीजाद देखा आपने? पैरीजाद
नहीं, मेरी वाइफ देखती रहती पाकिस्तानी सीरियल्स।
तो पैरीजाद बहुत एक टॉप का वो सिस्टम आया उसका भी, खैर आप उसका अगर आप प्लानिटरी वो कर लोगे ना कि okay. उसके कैसे उसका चेहरा काला होता है एकदम, उसको एक अमीर औरत अपने डॉटर से दूर करने के लिए उसको बोलती है कि आदमी का मुकद्दर सब उसके पैसे में होता है, ठीक है, जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो ताकि तुम्हारे ये जो पर्सनालिटी की ऐब है सबको स्टाइल लगने लगे, उसको ऐसे तगड़े तगड़े डायलॉग मारती है। बट द पॉइंट इज कि आप कह रहे हो कि उस पर अच्छी लैंग्वेज होती है।
आपने कभी गरीब लोग देखने हो ना जो मानसिक तौर पे गरीब हो, और ओशो इस बात में बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं समझदार अगर दिखना हो आप सबके अंदर कमियां निकालना चालू कर दो तो गांव का सबसे मूर्ख आदमी भी सबसे समझदार लगने लगता है। आप कभी भी ऐसा व्यक्ति देखोगे ना सबके अंदर कमियां निकाल रहा होगा, मैंने वो लोग यूजली वो लोग देखे परिवार में दोस्तों में हर जगह पे जिनके अंदर दो चीज की कमी थी, वो लोगों को अप्रिशिएट करना नहीं जानते थे, उनको खाना शेयर करना नहीं आता था, ये दो काम मैंने देखे। दैट्स प्योरली शुक्र, केतु के ना दो दुश्मन है, सॉरी शुक्र के दो दुश्मन है, शुक्र पैसा है, शुक्र के सिर्फ दो दुश्मन है, एक है केतु जिसको क्रिएशन पसंद नहीं है, उसको लिबरेशन पसंद है, और क्रिएशन और लिबरेशन का संबंध नहीं है, एक है केतु और दूसरा है मंगल, ईगो गुस्सा। आप जब कभी भी ऐसे अमीर आदमी से मिलोगे ना सही में अमीर है, जो मतलब ऐसे लोग जो बैंक में 25 CR का पोर्टफोलियो है और वो 15 साल पुराने रिड्स में चल रहे हैं, उनकी भाषा सुन के आपको लगेगा कि यार ये बंदा के अंदर ईगो नहीं है, ये बंदा कितना पॉजिटिव है, क्योंकि शुक्र ना सही में ऐसा प्लानट है जिसको ना किसी भी बंदे की बुराई पसंद नहीं है। शुक्र तारीफ करने का सही ना, आपको किसी को खुश करना हो आप क्या करते हो, आप किसी की शॉप पे जाते हो क्या करता है वो बंदा, आपकी तारीफ करता है ना, आप तारीफ करते हैं तो वो आप बाउंड हो जाते हो उससे सामान लेने के लिए आपको, क्योंकि उसने फील गुड करवा दिया। तो ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस है ना,
हम तो अपने शुक्र को भी राहू की तरह इस्तेमाल करते हैं।
तो आपको ना विनम्र अगर बोलना आ गया,
हाँ,
तमीज से, और अपने, और ये तब है जब आप अपने आप से भी बात उतनी ही तमीज से करें, तो
सेल्फ टॉक इज ऑल्सो शुक्र,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ना अपने आप से बात करें ना, अगर आप अपने आप से बदतमीजी से बात करें तो दुनिया आपसे तमीज से बात नहीं करेगी।
पर आप एक बात बताइए फिर भी, चलो आपने मैं बताओ बोलने वाला था, मैं बताइए भी आ गया एकदम पे आपके शुक्र की बात कहने के बाद, कि क्या शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि इंसान और आर्टिकुलेट बने, या उसकी वाणी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, सुनने में उसकी बात मज़े आए? क्योंकि एक होता है बड़े रोचक तरीके से स्टोरी टेलर जो अच्छी सी बड़ी तड़के वाली कहानी बताता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट वर्ड्स, मेनी टाइम्स इट इज स्लैंग्स, मेनी टाइम्स में गाली गलौज होती है, कई बार उसके अंदर बड़े ऐसे डार्क से स्टेटमेंट्स होते हैं दुनिया के बारे के अंदर, जिसके अंदर लोग हंसते भी हैं और चुप भी हो जाते हैं.
बिल्कुल.
सो यू कैन से कि क्या बढ़िया स्टोरी टेलर है, जबान पे उसकी कंट्रोल है.
बिल्कुल.
बट इज दैट, क्या उसका मतलब है, उसका शुक्र स्ट्रांग नहीं, मतलब उसका शुक्र स्ट्रांग है या नहीं है?
जिसकी भी भाषा अच्छी है ना, जिसके कपड़े ठीक ठाक आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि डेली अपनी पर्सनल हाइजीन करके कर रहा है, उसका शुक्र बहुत अच्छा है.
भाषा पे फिर से आता हूँ मैं, मतलब कि भाषा अच्छी होने का मतलब क्या है, कि तमीज,
अगर तू तड़ाक करके बात करनी पड़े, गुस्से में बात करनी पड़े और आप जल्दी से ट्रिगर हो जाएं, आप किस एक पॉइंट आता है ना हर किसी के लिए कि आप उस पर ट्रिगर हो जाते हैं. एक टॉपिक आता है, एक मैटर होता है जिसपे आप ट्रिगर होते हैं. जिस दिन आपका वो ट्रिगर बंद हो गया ना, थर्ड हाउस, ट्रिगर इज ऑलवेज थर्ड हाउस, मरकरी रिएक्शन, आपका रिएक्शन कितनी देर में आ रहा है, किस चीज पे, क्या वो सही चीज पे आ रहा है, बुरी चीज पे आ रहा है, वो ट्रिगर इंपॉर्टेंट है. जब आपका ट्रिगर लोगों को पता है ना कि ये इस बात पे रिएक्ट करेगा, तब लोग जरूर ट्रिगर करेंगे. जब आप ट्रिगर होना बंद हो जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं.
देन हाउ कैन पीपल इम्प्रूव देयर स्पीच, क्योंकि ये तो एक अलग चीज हो गई है कि चलो मैंने अपने कपड़े, अब जैसे मैं अच्छे कपड़ों में बैठा हूँ और कोई मेरे को आके बोल देता है फलाना फलाना फलाना, और मेरे अंदर पुराना गुस्सा है और मैंने उसको बोल दिया, तो आई एम जस्ट एन एंग्री मैन इन अ सूट. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं
बिल्कुल
जो वॉल स्ट्रीट पे होते हैं, और जो टिपिकल हम देखते हैं कि गुस्से में चिड़चिड़े होके ये सिगरेट पीते हुए जा रहे होते हैं, लोगों को गाली करते हुए, मतलब इंग्लिश में गाली करते हुए. वी हैव सीन दोज ट्रोप्स इन सिनेमा, राइट? सो यू कैन से दैट दोज गाइज हैव मास्टर्ड लाइक क्लोथिंग, दे आर लुकिंग टॉप नॉच, ओल्ड मनी लुक आल्सो,
बट उन्होंने मास्टर अपनी भाषा को नहीं करा, अपने थॉट प्रोसेस को नहीं करा. अच्छा एक बात बताओ, आप जब किसी 5-star रेस्टोरेंट में जाते हो और आप वहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, एटमॉस्फेयर अच्छा है, स्मेल अच्छा आ रहा है, आपकी भाषा ऑटोमेटिकली बदलती है, नहीं बदलती है?
हाँ, थोड़ा सा आदमी हल्का सा और डिग्निफाइड तरीके से बात करता है. हालांकि मैं तो वहाँ पर भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर भी ऐसी बर्ताव करता हूँ नॉर्मल से, ताकि मुझे ऐसा फील ना हो कि मैं कहीं अलग आया हूँ. ठीक
है, सबकी भाषा बदलती है. जैसे ही आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे रोड रेज हो, वहाँ पे आपकी भाषा बदल जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको गुस्सा दिखाना है. पर लेट सपोज रोड रेज हो और आप वहाँ पे चुप हो जाओ, आप बोलो यार कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, छोड़ दे, थैंक यू. वहाँ पर ना ये पता चलता है ये बंदा सही में बहुत तमीज़दार था, क्योंकि अगर आप ट्रिगर हो रहे हो ना विनम्र किसी भी बात पे, चाहे वो कहीं पर भी हो रहा, आप बोल रहे हो कि बंदा सूट में वेल ड्रेस्ड अप है, लेकिन वो अंदर से इतना दुखी है. और दुखी पता क्यों होता है बंदा, क्योंकि वो ना क्रिएट नहीं करना पाता. एक ह्यूमन की बेसिक डिजायर क्रिएशन है, वो किसी भी चीज में हो सकती है. शुक्र क्रिएशन है, ध्यान रखना जहां पर भी है चार्ट में, चाहे वो नाचना है. और क्रिएशन का कोई वैल्यू नहीं होता, पेंटिंग का कोई वैल्यू नहीं होता, भाषा का कोई वैल्यू नहीं होता, बच्चे आपके क्रिएशन है. ये तभी ह्यूमन डिजायर है. बेसिक ह्यूमन डिजायर क्या है, आपने बात करी ना शादी की, बेसिक ह्यूमन डिजायर है सेक्स की. क्यों है? क्योंकि वो आपका क्रिएशन है, आपको क्रिएट करना है. और द मोमेंट यू क्रिएट है ना, वो आपको हैप्पीनेस देता है कि मैंने इस यूनिवर्स में कुछ क्रिएट किया है. लाइक वैन गो बोलते हैं कि मेरे को ना पेंटिंग बनाने का पता नहीं कितना पैसा मिलता है, जो मिलता है पेंटिंग बनाने में मिल जाता है, क्योंकि उसका क्रिएशन है. तो द मोमेंट आप को मैंने जो मैनुस्क्रिप्ट दिखाया नक्षत्र का, उस नक्षत्र का रिजल्ट क्या आएगा आई डोंट नो, लेकिन वो क्रिएशन है, क्योंकि वो मेरे 1.5 साल की मेहनत उस क्रिएशन में गई है. उसको लिखने में जिस सुख दुख, जिस प्रोसेस से मैं थॉट प्रोसेस से गुजरा, उसने ही मेरे को सारी खुशी दे दी. क्योंकि उस समय मेरे को ये नज़र आया कि अच्छा ये पैटर्न है, यूनिवर्सल पैटर्न है, फॉलो हो रहा है, नाउ आई कैन रिप्लिकेट इट. जब आप ये करने लग जाते हैं ना, जिसको क्रिएशन नहीं आया ना, वो हमेशा जिंदगी भर दुख रहेगा. और ध्यान रखिएगा, जिसको दुखी कर रहा हो ना किसी भी इंसान को, उसको उसके क्रिएशन से हटा दीजिए, उसको तो मजदूरी कर, फिर ना इंसान. और पता है क्रिएशन ना हमेशा लिबरल लोग कर पाते हैं, मैं ध्यान रखिएगा, लिबरलाइजेशन, लिबरल लिबरल होना पड़ता है, क्योंकि आप ना किसी राग द्वेष द्वंद के साथ कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाए।
आप खुल के अपनी बात नहीं व्यक्त कर सकते अगर आपके मन में संकोच इतने सारे दुनिया को लेके।
आप जब तक अपने आप अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल नहीं है ना अपनी आइडेंटिटी को लेके कि मैं कौन हूँ, तब तक आप कैसे क्रिएशन कर पाएंगे।
तो फिर ऐसे लोग कौन से होते हैं जिनको औरों की निंदा करके भी एक मज़ा आता है, जो कि जैसे आलोचक ऐसे होता है बहुत आर्टिकुलेट क्रिटिक।
आलोचक होना अच्छी बात है तब तक जब तक आप इस काम के लिए कर रहे हो कि उससे आपको कोई निजी फायदा नहीं हो रहा।
ओके,
आप समझ रहे हैं। लेट सपोज कि अगर एक शू ब्रांड दूसरे शू ब्रांड का मजाक उड़ाता है, या एक कार कंपनी दूसरे कार ब्रांड का, तो ये जो फाइटिंग चल रही है दोनों के बीच में, इसमें किसी एक का नुकसान से किसी दूसरे को फायदा है। बहुत सिंपल है। पर अगर आप किसी बंदे को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप उसको बहुत प्यार करते हो, आप उसको बहुत अच्छी जगह देखना चाहते हो, तो आप उसको बोलते हैं कि सर आपको ना थोड़ा सा ये इम्प्रूव कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को आपके ब्रांड पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मैं इस ब्रांड को अच्छा देखना चाहता हूँ, मेरे को आपसे उम्मीद है अभी भी। तो आप उसको गाली नहीं देते, बोलते प्लीज़ इम्प्रूव कर लीजिए, यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हर किसी को होती है। ये अच्छी आलोचना है, ये होनी चाहिए, ये फीडबैक है बेसिकली। पर किसी का मजाक उड़ा के, किसी को नीचा दिखा के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे आपको पसंद आएगा। और लोग ना ऐसे ही होते हैं कि वो ना दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को अच्छा फील कराना चाहते हैं, क्योंकि उनके कोर में वो इतने इनकॉम्पिटेंट ऑलरेडी हैं, वो इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि मेरा भला नहीं हो सकता, देख अब तो मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगा, अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ना दूसरों को नीचे गिरा सकता हूं, क्योंकि मेरा कहीं नहीं जाना था, मैं तो इनकॉम्पिटेंसी का पर्सोनिफिकेशन हो चुका हूं। तो लोग बुराई पे आते हैं। तो उसको ये समझाना, जो व्यक्ति इस रडार और इस टेंजेंट पे चल रहा होता ना, इस फ्रिक्वेंसी पे, उसको वो खतरनाक है, क्योंकि उसको बदलना बहुत मुश्किल है। उसको अपने उसको निंदा में मजा आने लगा है। और पता है सबसे बड़े 10 जो पाप है हिंदुइज्म के, उसमें सबसे बड़े पापों में से एक निंदा है, कि आपसे किसी की भी कोई पुरानी बात कहे, कोई ऐसी बात कहे जो नहीं, तो आप अभी तो खैर कोई घरवाला नहीं बोलता, क्योंकि आई मेड ए रूल की मैंने बोला कि मेरे को बताओगे मैं फौरन करके फोन करके बता दूंगा, मेरे को बताना ही नहीं है। और जब एक दो बार ऐसा कर दिया तो फिर सबने बंद कर दिया कि बताएंगे नहीं। आपने अगर बंद करवाना है ना, आप फौरन सामने वाले बोलोगे मैं बता दूंगा, देख जो बोले ना सामने, इफ यू हैव ए प्रॉब्लम विद मी ना, आपको किसी से भी प्रॉब्लम है, आप सामने जाओ बैठो और बोलो देख यार ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कर ले। ये मैन टू मैन टॉक है, और ये वुमेन भी कर सकती हैं बेसिकली। आपको प्रॉब्लम है ना, आप सामने बैठो बात कर लो, सॉर्ट आउट करो कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये रियलिटी है, ये मैं चाहता हूँ कि आप करीजिए। आप नहीं करोगे ना, आप गरीबी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग दो काम करते हैं। गरीब इन द सेंस की फाइनेंशियली नहीं बोल रहा मैं मानसिक तौर से भी बोल रहा हूँ, कि वो पहली चीज़ दूसरों की निंदा करते हैं, वो हमेशा हर किसी के अंदर प्रॉब्लम ढूंढते हैं, और वो इतने चिड़चिड़े हो चुके होते हैं कि वो भगवान तक को नहीं छोड़ते। आप छोड़ दीजिए, वो तो कोई खेल भी रहा होगा ना क्रिकेटर, लाइक ये ऐसे ही है जैसे एक मोटा व्यक्ति सोफे पे बैठ के विराट कोहली को बोले अरे 5 रन बनाए यार, तुझसे एक भी नहीं बनना था यार, मतलब तो किसके लिए बोल रहे हैं। तो आप ना ऐसे लोगों को नहीं सुधार सकते।
सॉरी मैं एक मोमेंट ले रहा हूँ इस बात को, उसको वो एक्नॉलेज करने के लिए। मैं अब इस वीनस पे अटक गया हूँ, मेरा ध्यान मैरिज से साइड होके इस वीनस को स्ट्रेंथन करने के ऊपर ज़्यादा आ रहा है। चलो कपड़े हो गए, वाणी सुधार ली आदमी ने, और क्या कर सकते हैं हम अपने वीनस को स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड आई थिंक बिकॉज मेन स्ट्रीम जो लोगों की सोच है एस्ट्रोलॉजी को लेके, वो राहु केतु से बचना चाहते हैं, मंगल के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, शनि से भी डरना चाहते हैं, बचते नहीं ज्यादा प्लैनेट जिन पे वो कुछ भला कर पाए,
वो अपने आप को भला कर पाए,
अपने आप को भला कर पाए, डर की तरफ ज्यादा भागते हैं कि राहु केतु से कुछ बुरा ना हो जाए और शनि की दृष्टि से मैं बच जाऊं और मैं वैसे ही मांगलिक हूं और बृहस्पति तो यू नो व्हाट आई मीन। तो उस सेंस में हाउ एल्स कैन वी स्ट्रेंथन आवर वीनस. एंड अब मैं देख रहा हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स. इससे पहले इतने समय तक रैंडम वीडियोज देखते हुए आई हैवन्ट रियली पेड अटेंशन टू हाउ वन कैन स्ट्रेंथन देयर वीनस अंटिल नाउ.
सो शुक्र का एक और बहुत अच्छा वो है कि शुक्र इज बेसिकली डीएनए. आपका डीएनए तो लोग बोलते हैं मेरे को तो ये डीएनए में मिला है, ठीक है ना, मेरे को बीमारी हुई है डीएनए में हुई है. तो डीएनए क्या है कि 23 क्रोमोसोम्स माँ से आए हैं, 23 क्रोमोसोम बाप से आए हैं. एंड वो एक स्ट्रैंड जिस दिखाया जाता है उस टाइप का स्ट्रैंड है. पर हर 8 हफ्ते में हमारा शरीर नया बनता है, ठीक है. अब उस 8 हफ्ते में जब नया शरीर बनना है या 6 हफ्ते में नया स्टमक बनना है या दोबारा से स्किन फॉर्म होना है, बाल फॉर्म होने हैं, वो कहाँ से होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना कहाँ से बन, खाना क्या करता है कि जैसे जिक्सा पजल के ब्लॉक्स होते हैं इसी तरीके से डीएनए का इंटरनल स्ट्रक्चर है. तो अगर उसको मैग्नीशियम चाहिए, अब वो मैग्नीशियम कहाँ से लेगा, आपके खाने से लेगा. पर आप तो मैग्नीशियम नहीं खा रहे, आप तो गुड़ खाते नहीं हो जहाँ पे मैग्नीशियम है, आप खाते हो आइस लाते कॉफ़ी, आप खा रहे हो कुछ और ऐसा खाना जिसके अंदर मैग्नीशियम नहीं मिल रहा. तब उसको बेचारे को जितना मैग्नीशियम मिला आपके डीएनए को, उसने उस हिसाब से उसका छोटा मोटा जिक्सा पजल बनाया और थोड़ा सा फिट कर दिया. अब वो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है. अब यही पैटर्न रिपीट होता है तो जवानी में चल जाता है, क्योंकि जवानी में ना और बहुत सारे स्ट्रेंथ होते हैं आपके अंदर, टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा होता है, बना रही होती है बॉडी, लगातार रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो परेशानी नहीं होती, शुक्र अच्छा चल रहा होता है. डीएनए आपका बना ना, बूढ़े इसलिए तो हो रहे ना क्योंकि डीएनए अब कमज़ोर हो रहा, एज बढ़ रही है.
करेक्ट.
आपका टेस्टोस्टेरोन इतना बनना बंद हो गया. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे एज बढ़ी आपकी हैबिट्स तो हुई हैं, अब आप वैसा खाना तो आप वैसा नहीं खाते. अब क्या होगा कि अब ना आपको प्रॉब्लम आने लगेगी डायबिटिक्स, स्टमक इश्यूज, क्योंकि अब वो जिक्सा पजल टूट रहे हैं. अब आप कह रहे हो ये तो मेरे को जेनेटिक प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी मदर को भी डायबिटीज़ थी. सर आपने खाना बदला नहीं, आपने अपनी हरकतें बदली नहीं खाने को लेके, फूड हैबिट्स को लेके, और आप वही टाइप का खाना खा रहे हो जो कि आज की डेट में आ रहे हैं. तो आपको जो बीमारियां हैं, और शुक्र की बीमारियां ना सॉल्व नहीं होती, शुक्र की महादशा में जब भी बीमारी होगी बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज आती है क्योंकि वो डीएनए से ओरिजिनेट हो रही होती है. शुक्र मतलब ये आँख 3 दिन में नहीं बनती है. तो अगर आपने अपनी आइज को ठीक करना है तो आप आइज वाला खाना खाइए.
शुक्र की महादशा में क्या बीमारियां हो सकती है लोगों को?
किडनीज, जो फिल्ट्रेशन करता है, आपकी आइज, आपका पैनक्रियस, और अगर ये 3 गए, ये तीनों दोबारा नहीं बनते हैं. ये तीनों के कमजोर होने से आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाए, फिर आप क्या करोगे? आपको अगर प्रॉब्लम आने लग जाए अपनी आइज के अंदर, दिखता नहीं है, इधर उधर घूम जाए आइज, एंगल बन जाए, वो ठीक नहीं होती. You can see clearly.
No, not that much, but like, हाँ.
But शुक्र को अगर आपने स्ट्रेंथ करना है ना, आप अपना फूड मैनेज कर लो.
Isn't that for moon? शांति से बैठे खाना खाना.
शांति से बैठे खाना, शांति से ध्यान रखना, शांति इज मून, खाना इज शुक्र. मून गेट्स एग्जॉल्टेड इन द हाउस ऑफ वीनस. तो खाना जब इंसान आप आराम से अच्छा खाना खाते हो ना, बिल्कुल बेसिक खाना खाते हो, जो कि आपके आपको पता है कि मेरे को बाजरे की रोटी खानी है, अब सर्दी आ गई है, मक्के की रोटी खानी है, ठीक है, मेरे को सरसों का साग चाहिए, ठीक है, मेरे को ज्वार खाना है,
पर मैं फुर्सत से खाने को प्यार से देख के उसके आनंद ले लेके एक टुकड़ा या जो भी,
और उसकी बुराई ना करके
कि क्या घटिया खाना दिया आज, इस तरह से ना.
द मोमेंट क्रिटिसिज्म हैपेंस टू शुक्र ना, शुक्र इज गोइंग टू गो बैड.
बट क्रिटिसिज्म ऑफ एवरीथिंग ब्यूटिफुल,
क्रिटिसिज्म आप जब किसी के अंदर कमी देखने लग जाओ, आप किसी चीज को देखो और आपका दिल खुश हो, वो आपका दिल पता है किसी चीज को देख के खुश नहीं होता, वो नेचुरली खुश होता है, चीजें से माध्यम बनती हैं.
करेक्ट.
अगर आप अंदर से
बिहोल्डर,
यस एग्जैक्टली, सो आप जब अंदर से दुखी है ना किसी बात को लेके, आप दुनिया की सबसे अच्छी जगह पे हो सकते हैं. आप दुखी रहेंगे क्योंकि आपकी हैबिट बन गई है दुखी रहना, और अगर आप अंदर से खुश है ना, आपको किसी चीज की जरूरत है नहीं खुश होने के लिए, फिर आप आइसोलेशन में तो खुश है.
आई हैव अनदर फ्रेंड जिसका मैंने कल चार्ट देखा था, उनका वीनस प्लस मार्स 12वें घर में है. आपने अभी अर्लियर बताया, मुझे याद आ गया कि वीनस और मार्स तो ऑपोजिट एनर्जीज हैं.
हाँ जी.
तो कैसे इनकी गाड़ी चलेगी फिर?
आप ये देखो कि 12th हाउस में चलेगी किसकी। 12th हाउस आइसोलेशन का है।
केतु?
12th हाउस वहां पे केतु तो नहीं बैठा ना अभी, तो बैठा तो शुक्र और मंगल है। कौन से साइन में है
पता नहीं।
अच्छा तो 12वें घर के अंदर शुक्र की ज्यादा डोमिनेंस है, बिकॉज वहां पे आके वो एग्जॉल्टेड होता है।
रियली?
शुक्र इज एग्जॉल्टेड इन पाइसेस।
ओके, इट्स 12th हाउस इज द हाउस ऑफ पाइसेस। ओके,
इट्स अ नेचुरल 12th हाउस।
ओके,
तो वो हाउस वाइज एग्जॉल्टेड है। मार्स वहां पे नहीं चलेगी क्योंकि
ड्यूटी डज वेल इन द वॉटरी रियल्म ऑफ पाइसेस। हाउ?
शुक्र को पाइसेस क्यों मिला? कोई तो रीजन होना चाहिए ना। द आंसर इज ए नक्षत्र। रेवती में शुक्र एग्जॉल्टेड है। रेवती साइन है क्रिएशन का, आर्ट एंड क्राफ्ट का। पर सारे आर्टिस्ट के साथ विनम्र क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है ना सारे आर्टिस्ट के साथ,
खोए रहते हैं
और पैसा नहीं मिलता।
हाँ, करेक्ट।
आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं है। मतलब आपको ना कई बार ऐसा लगेगा, यार ये आर्टिस्ट ने कितना सुंदर पेंटिंग बनाया है, कितना अच्छा गाया है। और कई बार मेरे को लगता है कि कई बार हम बहुत पुरानी मूवीज देख रहे होते हैं ना, उन मूवीज के क्लिप्स आज भी आप बैठ के देखोगे, आपको लगेगा इस एक्टर को तो सिर्फ एक बार पैसा मिला होगा। इस आर्टिस्ट को शायद एक बार पैसा मिला होगा। लाइक एक मूवी है मालामाल वीकली।
हाँ हाँ, मुझे याद है।
यस, ब्रिलियंट मूवी, राइट?
सुपर फनी।
घोसला का घोसला, अनदर मास्टरपीस। बहुत अच्छी मूवीज हैं। हर एक बंदे का एक्टिंग सबको याद होगा।
हाँ,
उनको पैसा एक बार मिला होगा ना। वो पैसा उसको बार बार मिलना चाहिए था ना, जितने लोगों को उसने खुशी पहुंचाई।
हाँ,
कितने लोग हंसे होंगे ना आज भी।
जैसे ऑथर्स को रॉयल्टी मिलती है, हालांकि कम मिलती है, बट 10% मिलती है, बट हर किताब की सेल पे मिलती है
ना अभी। हाँ, भी मिलती है, लेकिन आर्टिस्ट को नहीं मिलता क्योंकि उनको वन टाइम फी मिलता है। शुक्र इज मनी। एक आर्टिस्टिक नक्षत्र में शुक्र सबसे बेस्ट काम करते हैं, क्योंकि अगर आर्टिस्ट को पैसा मिल जाए ना, फिर वो वरी फ्री हो जाता है, फिर बोलता है कि अब मैं काम कर सकता हूँ।
मेरा दोस्त आर्टिस्टिक है, पर वो आर्टिस्टिक उद्योगपति है, बहुत अच्छा। ही इज वन ऑफ द बेटर बिजनेसमैन आई नो, एंड ही इज बीन डूइंग बिजनेस इन अ वेरी इनोवेटिव स्ट्रेंज फील्ड दैट नो वन एल्स कैन डू इट इन सिंस वी वर बेसिकली टीनेजर्स।
नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई शुक्र इज एग्जॉल्टेड ओवर देयर। वो मार्स की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट और वो उसका वैसा बैकग्राउंड आया, पर शुक्र एग्जॉल्टेड ही 12वें घर में हो सकता है।
पर वो काम तो आइसोलेशन में नहीं करता, वो मिलनसार है, लोगों से मिलता रहता है।
देयर इज अ मार्स देयर।
ओके,
अगर वहां पे कोई ऐसा प्लैनेट होता जैसे केतु या मरकरी, देन ही वुड हैव बीन लाइक साइलेंट बैकग्राउंड सेटिंग की नहीं मिलना है यार हमें किसी से, एंड मोस्ट लाइकली देन वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं होता। बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट के ना, अगर वो मार्स वहां पर है ना, तो सैटर्न भी कहीं ना कहीं से कनेक्शन 12th हाउस में बनाएगा।
उसका मार्स स्कॉर्पियो में है। सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, शायद मैंने मिस्टेक, नहीं बिना सर, 12th हाउस में होता है स्कॉर्पियो,
कहीं भी आ सकता है स्कॉर्पियो,
तो उसका मार्स चेष्टा में है। सॉरी, आई हैव टू चेक। कोई बात नहीं, हम अगर ये वाला पार्ट खराब हुआ, हम इसको हटा देंगे एडिटर को, क्योंकि शायद मेरे को कन्फ्यूजन हो गया उसके चार्ट में। इररिस्पेक्टिव वो तो, बट लाइक मुझे ज़रूर पता है कि हाँ उसका वीनस ज्येष्ठा के अंदर है, मुझे ये पता है। हमारा मून ज्येष्ठा में, हमारी पट्टी बहुत है, वो बिजनेस में लेके नंबर वन बनना चाहता है, मैं वैसे ही नंबर वन बनना चाहता हूँ।
पॉडकास्ट
बट सो यू आर सेइंग कि इन वीनस फुर्सत से अब बैठ के खाना खाओ, ठीक है, खाने की इज्जत करो, और क्या हो सकता है?
योर पार्टनर्स, योर सर्कल, योर थॉट प्रोसेस। लाइक आपको थॉट कहाँ से आते हैं? इट्स एरी साइन, राइट? लिब्रा साइन।
हाँ,
आप लिब्रा कैसे, आप किसके साथ जाके कनेक्शन बनाने वाले हो?
दोस्त यार होते हैं अपने, एसोसिएट्स होते हैं।
वो कौन बनते हैं? आप क्लास में कौन से बच्चों के साथ बैठते थे? जैसे आपके खुद हो, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपको लगता था ये बंदा ना मेरे एग्जैक्टली एनर्जी के आसपास काम कर रहा है और मेरे को ना ये हेल्प कर सकता है,
या ये मेरी बात पे यस एंड करता है, तो और मजे आते हैं।
बिल्कुल ठीक है, वो आपको कंप्लीट कर रहा है। हाँ, लिब्रा, आप हमेशा वो पार्टनर्स देखते हो जो आपको कंप्लीट कर रहे होते हैं। लाइक अगर मेरे को कोई भी पार्टनर किसी का देखना हो, तो मैं बोलूंगा आपका 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, या वो है उसी टाइप के आपके फ्रेंड्स बनते चले आते हैं। लाइक अगर 7th हाउस का सैटर्न है, आपके फ्रेंड्स आपसे ज्यादा एज वाले लोग मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेंगे, क्योंकि उसकी आपको जरूरत है। और वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से आपको समझाएंगे, जो कल्चर हेरिटेज इन सब में बहुत बिलीव करते होंगे, इन सब की आपको जरूरत है। यही आपके फ्रेंड्स बनते चलेंगे, ये आपका सर्कल बन जाएगा। और आपके 7th हाउस में है ही राहु, तो आपको पता है कि आपके लोग वो हैं जो फ्रेंड्स वो हैं जो कि ना आपको लगातार धोखा देने के लिए आते हैं, या फिर आप चुनते हैं उन लोगों को बेसिकली। आपके सेवेंथ हाउस में केतु है, तो आपको पता है कि मेरे का तो वो दोस्त वो लोग बनने हैं जिन्होंने आके ना मेरे को और नीचे ड्रैग करना है, जिनको मैंने मुक्ति दिलवानी है। क्योंकि आप देखो ना कि केतु क्या है, केतु रिक्वायर्स लिबरेशन, तो वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहा है कि यार मेरे को ना लिबरेशन करवा दे, मेरे को कर्जे से मुक्ति दिलवा दे, मेरे को यहां से छुड़वा दे, मेरे को ये काम करवा दे, वो आपको यूज करेगा। राहु होगा ना, आप लोगों को यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपको उनको जाल में फंसाना आता है। तो जब आपको देखना है ना कि आपका विनस शुक्र कैसे इंप्रूव करना है, शुक्र इज बेसिकली सेवेंथ हाउस, ये लिब्रा, आप अपने कनेक्शन सुधार लीजिए कि मेरे को किन लोगों के साथ रहना है। क्योंकि अगर आपको विनम्र एप्रिसिएशन नहीं मिला आपके अच्छे कामों के लिए, तो इवेंचुअली एक टाइम पर आके ना आपको होगा यार ये बेकार हो गया, मैं काम भी करूं, मेहनत भी करूं इन लोगों के लिए, इतना सब चीजें करूं, ये तो मेरे को नीचे
फिर तो आप ये भी हो सकता है आप काम ही करना छोड़ दो अच्छे काम, अब बोले मैं बुरा ही आदमी बन जाता हूं, तो क्लासिक विलन स्टोरी है
बिल्कुल। तो इसलिए ना आपको अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, जहाँ पे जाते आपको देख के लोग खुश नहीं हो रहे, जैसे कि बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाते आजकल, हमारे लिए जनरेशन और आपके लिए जनरेशन तो बिल्कुल नहीं जाती, क्यों नहीं जा रहे आप, कभी सोचा है क्यों नहीं जाते, क्या हुआ है?
ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारे यहाँ के जाते भी हैं लेकिन ऐसे ऑब्लिगेशन के तौर पर जाते हैं कि
ऑब्लिगेशन, खुश होकर नहीं जा रहे।
पर मुझे ऐसे भी लगता है बिकॉज हमारे फैमिली सिस्टम्स और हमारे जो दोस्ती, हमारे दोस्ती आरों में और ऑनलाइन दुनिया में बढ़ गया है। पहले ऐसा होता था कि रिश्तेदार ही आपके एक बहुत बड़े सपोर्ट हुआ करते थे, वो दैट सॉर्ट ऑफ स्प्रेड आउट नाउ,
वो बचा नहीं है। क्योंकि पहले रिश्तेदार आपको अप्रिशिएट करते थे, वो जेन्युइनली आपके आपके लिए खुश होते थे, आपको देख कर खुश होते थे, अब वो नहीं बचा। जब वो नहीं बचा तो अब जो है वो रिलेशंस खत्म होते चले गए। जहाँ पर भी आपको सेलिब्रेट किया जाए आपकी ओरिजिनल फॉर्म में, आप जैसे हैं, वो सबसे अच्छी जगह होती है। और अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जिस ऑफिस में आप हैं, अपने सराउंडिंग्स देखिए, लिब्रा आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपके आसपास कौन बैठ रहा है, क्या वो आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके विजडम के लिए? नहीं करते तो आपको नहीं रहना चाहिए, द रॉन्ग पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको सेलिब्रेट किया जा रहा होगा। आप जैसे ही व्यक्ति को जहाँ पे किया जा रहा होगा ना, वहाँ जाना चाहिए।
That strengthens your Venus.
वो शुक्र को बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि आपकी भाषा ठीक है, आपका खाना ठीक है, आप ड्रेसिंग अप अच्छा कर रहे हो। अगर इन तीन बातों के बावजूद भी अगर आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते आपके अच्छे कामों के लिए, इट मीन्स यूर इन अ रॉन्ग प्लेस, वहाँ पे नहीं होना चाहिए।
दैट कम्स बैक टू मैरिज फुल सर्कल के अंदर। अब हमने देखा कि आपने एक बार बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जॉनी डेप के ऊपर, शायद एक बार
मैंने एक ब्लॉग लिखा था,
ब्लॉग लिखा था, आपने मेंशन करा था कुछ कि शायद सैटर्न इज द लोएस्ट पॉइंट या फिर ऐसा कुछ है।
वो तब था जब वो केस चल रहा था,
हाँ,
एंड देन आई मेंशन कि वो केस जीतने वाले हैं, रीजन बीइंग इज उनके कॉम्बिनेशन ऐसे थे, बट ही हैज अ शुक्र इन कृतिका नक्षत्र, एम्बर हर्ड शुक्र कृतिका नक्षत्र, प्रिंसेस डायना शुक्र कृतिका नक्षत्र, यू हैव थ्री एग्जांपल्स ऑफ कृतिका नक्षत्र। So what शुक्र कृतिका is, कृतिका means free from bondage, कृतिका cuts down, कृतिका is the symbol is तलवार, उसका symbol है। तो जिसका काम काटना हो, जिसका काम ये हो बताना हो कि मैं आ चुका हूँ, ठीक है, उसमें आप शुक्र डाल रहे हो, आप बोल रहे हो कि शुक्र को ये energy point है, इसको use करना है। अच्छा, इन तीनों का शुक्र तो 2 degree पे है, जो कि बहुत स्पेसिफिक डिग्री है कृतिका नक्षत्र की। इस 2 degree कृतिका में शुक्र को आप डाल रहे हो, कृतिका बोलता है कि मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए किसी भी हालत के अंदर, चाहे कुछ भी करो, और मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं आपको कंप्लीटली नलिफाई कर सकता हूँ किसी भी चीज को, जो भी चीज़ मेरे सामने आएगी। तो जब इनका शुक्र उसमें जाता है, इनको बॉन्डेज स्वीकार नहीं, क्या हुआ एम्बर हर्ड के साथ या जॉनी डेप के साथ या तो प्रिंसेस डायना के साथ, ये लोग दिमाग में सोच लिए ना कि मेरे को पार्टनर ऐसा चाहिए जो मैं चाहता हूँ, और पार्टनर वो करेगा जो मैं कह रहा हूँ, ईगो है, और नहीं करोगे तो फिर मैं सारे टाइज, सारे जितने भी बंधन है वो काट दूंगा
और सेल्फ सैबोटेज में भी चला जाऊंगा।
बिल्कुल, ये जो सेल्फ सैबोटेज का हैबिट है ना, वो शुक्र कृतिका प्रॉपरली देता है, कि वो आपको सोचने में देता है कि आप ना पार्टनर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप नुकसान अपने आप को पहुंचा रहे हो। तो जो केस चल रहा था और मैं देखा कि दोनों का शुक्र कृतिका है, बट जॉनी डेप वाज रनिंग अ बेटर दशा। बट ऐसा नहीं कि जॉनी डेप का अभी, आई थिंक इन फ्यू मंथ्स यू विल सी हिज डाउनफॉल विल अगेन स्टार्ट बिकॉज द सर्कल इज अगेन रनिंग बैक। तो आप जब दशा देखते ना, दशा से बड़ा कोई नहीं होता कभी भी। दशाएं उस टाइम पे उनकी अच्छी दशा थी, अब जैसी एम्बर हर्ड की अच्छी दशा आएगी उनकी खराब आएगी।
और आप जैसे अमिताभ बच्चन और, या अमिताभ बच्चन छोड़ो, अब आपने इतने सारे सेलिब्रिटी मैरिजेस देखी, क्योंकि सेलिब्रिटी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि देयर मैरिजेस एंड देयर चार्ट्स आर वेल नोन। सो व्हाट आर सम स्टैगरिंग केसेस ऑफ लाइक डिवोर्स और सेपरेशन एंड इट इज क्लियर फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट कि ये तो होना ही था।
मैं आई विल टेल यू द प्रैक्टिकल केस इफ यू डोंट माइंड।
हाँ हाँ,
मैं रिक्वेस्ट बताता हूँ लोगों की, ये और ये कोई मैं नहीं बना रहा, ये सही में रिक्वेस्ट है। तो किसी का रिक्वेस्ट है ड्यूरिंग द कंसल्टेशन, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि कई बार लोग क्या एक्सपेक्टेशन के साथ ज्योतिष पे आते हैं, कि मेरी शादी हो रखी है पर मेरा डिवोर्स हो जाए, मेरी शादी जो मेरी गर्लफ्रेंड है उससे हो जाए, उसकी शादी तय हो रही है किसी और के साथ वो टूट जाए, और मेरी वाइफ को कि मेरी वाइफ की भी शादी किसी अच्छे व्यक्ति से हो जाए।
तो बहुत ज़्यादा बहुत गहरा मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है।
पर इनको ये समझ में नहीं आ रहा, तो बिकॉज इनका एक्सपेक्टेशन गलत है ज्योतिष से। तो मैंने इनको वापस ईमेल करवाया, मैंने कहा इनको पूछो और कोई इच्छा रह गई हो वो भी बता दो, क्योंकि जब जिन बाहर निकालना ही है चिराग से तो हम उसको वो भी बोल देंगे। तो लोग ऐसा भी पूछते हैं, और आपको ऐसे ऐसे केसेस सुनाई देते ना कि आपको लगता है यार ये बंदा जिंदा कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ।
हाँ,
लाइक देयर इज अ केस कि उसको पता है कि वाइफ का बहुत जगह रिलेशंस है, दे नो दस, क्लियर हो गया है, हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, हस्बैंड को बिजनेस में बहुत इश्यूज हैं। अब इस ड्यूरेशन के अंदर हस्बैंड का तबीयत भी खराब हो जाता है, लेकिन वाइफ इज हेलबेंट कि देखो इतने टाइम को जो कोर्ट से टाइम मिलता है ना कि इतने टाइम तक आपको साथ रहना है फॉर दिस डिवोर्स प्रोसेस, उसका तो बोल रही है वाइफ बोले कि जो करना है आपको करना है, आई एम गोइंग आउट। देन यू रियलाइज कि यार इसके चार्ट के अंदर, आई मीन हाउ अनलकी कैन दिस पर्सन बी, कि हेल्थ नहीं है, जॉब बिजनेस खत्म है, वाइफ जा रही है, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा ना अभी किसी की ज़िंदगी में। आपके पास ना बिजनेस चलाया है आ जाता है कोई बात नहीं, तो समय का चक्कर है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, हेल्थ ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिकवर हो जाएगी, लेकिन जो इमोशनल वो है, इमोशनल डैमेज है, वो कौन रिपेयर करेगा, क्योंकि वो बंदे का बीमारी का कारण वाइफ है। कि जब आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हो ना, नोबडी कैन रिपेयर यू, एंड आपको ना जेन्युइनली सॉरी फील होता है ऐसे केसेस देख के, आपको लगता है यार इंसानियत के नाते मतलब दुश्मन भी नहीं करते एक दूसरे के साथ ऐसा, कि जब आप ऐसी स्थिति में हो आपको छोड़ के नहीं जाते, तो दुश्मन से भी बदतर है।
तो उसी में तो तड़पाने में तो आनंद आता है लोगों को एक दूसरे को,
तब आपको, और तब आपको ये लगता है कि चार्ट्स मैच कर लेने चाहिए थे या शादी नहीं करनी चाहिए थी। एंड इट इज बोथ वेज, ऐसा नहीं कि वुमेन ऐसे ही, मेल सेम स्टोरी, कि वो बंदा उसको लगता है कि लाइक एक देयर इज अ पर्टिकुलर केस एंड दिस इज वेरी वेरी पर्टिकुलर केस, कि वो केस चल रहा है अभी भी पिछले 10 साल से, हस्बैंड वाइफ के बीच में सेम घर में रह रहे हैं, वेल्दी फैमिली, एक्सट्रीमली वेल्दी फैमिली, भाई बोल रहे मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के, बट आई विल हैव रिलेशंस विद अदर पीपल। हस्बैंड सेम केस, स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस
इन दिल्ली, जस्ट कॉल एन अरेंजमेंट। तो आपस में तो कर ही लेते हैं लोग ऐसा, लाइक इट्स फेयरली मोर कॉमन देन पीपल थिंक इट इज।
हाँ, लेकिन वो अरेंजमेंट अगर आपस में हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि कोर्ट केसेस दोनों तरफ से चल रहे हैं,
कोर्ट केसेस चल रहे हैं, सेम घर में रह रहे हैं,
हाँ जी,
रूममेट्स की तरह,
हाँ जी,
इफेक्टिवली, एंड बाहर देयर लाइक विद अदर पार्टनर्स,
हाँ जी,
ये किस तरह की चीज।
बट देन यू डील विद दीज केसेस ना, वो केसेस आते हैं एंड और दोनों ही मॉरली एक्सट्रीमली करप्टेड है,
ओके,
दोनों पार्टीज मॉरली करप्टेड हैं और ये अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, मतलब कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है या मेरे को इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। फिनेंशियल पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मोरालिटी का है, जुपिटर का इशू है। मैंने बोला ना, जुपिटर नक्षत्र को सेक्सुअल इश्यूज आते हैं। दिस पर्सन हैज ए मून इन विशाखा। मैंने जितने केसेस देखे ना, मैरिज अगर सेक्सुअलिटी पे खत्म हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम बृहस्पति के नक्षत्र का है।
तो बृहस्पति के नक्षत्र वाले तो क्या सोच रहे होंगे देख के,
बट देर आर गुड थिंग्स एज वेल, राइट? तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बट आप कभी भी देखोगे ना, मून विशाखा में है, पुनर्वसु में है, मैरिज का प्रॉब्लम लाइफ में लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करेगा।
एंड कौन से ऐसे वाले कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब हाउसेज और प्लैनेट्स के, जिसके अंदर इनफिडेलिटी या फिर मल्टीपल पार्टनर्स या फिर क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्स राइट वर्ड, जैसे आपने कुछ समय पहले एक व्यक्ति के लिए ह्यूग हेफनर का वर्ड इस्तेमाल करा था, प्लेबॉय नहीं बोलूंगा मैं, आई वुड से लाइक बिफोर मैरिज लाइक सेवरल पार्टनर्स जिसके किसी के होते होते हैं एंड देन इनफिडेलिटी के, वो क्या आपने रिकरिंग कौन से आपने हाउसेज और प्लैनेट्स देखे हैं?
व्हेन यू हैव हॉट प्लैनेट्स, मार्स, सन, और वो सेवेंथ हाउस में आ जाए या शुक्र के पास चले जाए, शुक्र को, शुक्र ऐसी जगह पे चला जाए, उस प्रेग्नेंट केसेस में ना, इनको बोलते ना कि इनको सब्र नहीं आता। और ये अगर ये गलत काम भी करते हैं ना, बोलते सन सात, सूर्य सातवें घर में हो ना, ये बंदा गलत काम भी करता है ना, तो वो भी ढोल बजा के करेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करूँगा, तुमको नहीं पसंद आ रहा हो तुम्हारी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं राजा हूँ और मैं राजा हूँ ना अगर, तो ये काम मेरे तो ऐसे ही करता हूँ। तो सन अगर सेवन्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, वो गलत काम को भी जस्टिफाई कर देता है।
गलत मतलब सेवरल पार्टनर्स होना या इनफिडेलिटी,
लाइक बिल क्लिंटन्स चार्ट,
हाँ,
सन ट्वेल्थ हाउस, मरण करण है, तो वो बंदे ने अगर कर भी लिया तो उसको ना उसके बाद ही फर्क नहीं पड़ा।
हाँ, उसने कभी एक आध बार सॉरी बोल दिया, जैसे बोल दिया कहने के लिए, उसने ना कभी ऐसा दिखाया कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, अपना डोलता रहा बढ़िया तरीके से वो।
तो सन, सन ही तो आपका ईगो प्राइड है। सन फिफ्थ हाउस में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, लगन में हो, दीज आर द पीपल विल से कि जो करा है ठीक करा है, एंड दे विल स्टैंड बाय देयर थिंग्स, बट दे आर वेरी कॉशियस कि मैं जो करूँ मॉरालिटी राइट है, इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इज्जत गई तो सब कुछ गया। सन अगर खराब जगह पे बैठा है ना, लाइक पैमेला एंडरसन, सन इज इन आद्रा नक्षत्र, तो आद्रा नक्षत्र है ना, आद्रा नक्षत्र के लिए कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं, वो स्टार है ना, वो जोडियाक्स के बिल्कुल सेंटर में है, वो तारा है जिसने मानवता को रास्ता दिखाया है कई सदियों तक। वो बोलता है मेरे लिए कुछ गलत सही नहीं है, देवता और दानव दोनों इक्वल है मेरे लिए, तुम मेरे पास आओ मैं तुमको सही बात बताऊंगा। उसमें सूर्य बैठा है, तो सूर्य महादशा में सिक्स टेप लीक हो गया, लोग बोलते उन्होंने खुद करा है, उसकी वजह से ही बाद में केसेस हुए, तो कुछ तो सोचा होगा ना लीक करते वक्त, किस लिए कराए, फेम के लिए, और फेम इस तरीके से चाहिए था,
मिल गया, लेकिन फेम
मिल गया सूर्य का,
उसके बाद से तो बेवॉश तो चलो एक चीज थी, इट कंप्लीटली एलिवेटेड हर एज द बिगेस्ट स्टारलेट ऑफ हॉलीवुड एट दैट टाइम।
ठीक है, उसके सेम पैतरा किम कार्दशियन ने करा,
या
ठीक है,
वेयर इज हर सन,
आई बिलीव दैट्स इन 12th हाउस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई हैव टू रियली चेक। बट वो जो केस स्टडी है, आई हैव इंक्लूडेड दैट, सेम कॉम्बिनेशन है, लगभग सेम तरीके से रिपीट कर रहे हैं। तो आपको जब ये पता ना कि सामने वाला बंदा का मॉरालिटी का इश्यू आएगा, सन वीक है, सातवें घर में एक केस जो मैंने आपको पहले भी बताया, सेवेंथ हाउस में सन है एरीज में, वो बंदा रो रहा है कि मेरे को शादी करनी है, ऑफिस के अंदर आए व्यक्ति की शादी करनी है, तो मैं बोला हाँ शादी का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो बोलता है जिससे शादी करना चाहता हूँ उसका 9 साल का बेटा है, उसने गर्ल छोड़ के आ गई है, मेरे को शादी करनी है। एंड ये टिपिकली दिल्ली का केस नहीं, गढ़वाल का केस है, ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट है। और कि शादी तो करनी है, लेकिन ना मेरे घोड़े पे बैठ के करनी है, मैं बताना चाहता हूँ मैंने शादी करी, मैं छुप के नहीं करूँगा शादी। सन एग्जॉल्टेड है सेवन्थ हाउस में एरीज में, तो छुप नहीं रहा, वो कह रहा नहीं 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 मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, मेरे लिए गलत नहीं है ये. तो ये जो केस है ना, लाइक इन यूर चार्ट, इफ यू से मैं 5 स्टार लाऊंगा और तुम्हें लग रहा हो गलत है, ये है वो है, मैं नहीं मानता, सन है 7th हाउस में, मैं ये करूंगा, मैं राजा हूं. सो दैट्स हाउ पावरफुल इट इज.
बट इज दैट बट व्हाट आई आस्क्ड यू इज कि क्या डज दिस लाइक कौन से ऐसे चार्ट्स और सॉरी कौन से ऐसे प्लैनेट्स और हाउसेस हैं जो सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्निफाई करते हैं इनफिडेलिटी या मल्टीपल रिलेशनशिप्स. तो आपने एक तो आपने मेरे को करार दे दिया कि मैं हूं इंसान.
नो आई एम नॉट सेइंग कि इट्स लाइक कि
मोर लाइकली
इवन इफ आई एम गोइंग टू डू रॉन्ग आई विल स्टैंड बाय इट, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट इन हाइडिंग. मैं छुप के नहीं करूंगा.
नो शेम अराउंड दैट. व्हाट एल्स और कौन से ऐसे वो है?
सो व्हेन यू शुक्र goes in affliction. So whenever you read a 5-star chart, right, Shukra will always going to be in affliction. Shukra is always going to be in Mercurian houses. And this is, and with affliction, like Shukra 3rd house mein hai, Rahu saath mein baitha hai, and then there are multiple problems happening in the Libra sign and Taurus sign. Koi bhi na vinamra, koi bhi single combination kabhi chart mein major event nahi deta, dhyan rakhna. ये जो गलत फहमी है ना लोगों की, अच्छा मेरा सन 4th सन 7th हाउस में तो ये खराब है, नहीं ऐसा नहीं होता. क्योंकि कोई भी प्लैनेट आइसोलेशन में काम नहीं करता,
सब साथ में काम कर रहे होते हैं.
अगर मान लो सन 7th हाउस में है और लियो के अंदर जुपिटर बैठ गया, इट चेंज द रिजल्ट. तब तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी जुपिटर का बैकअप बैठा है ना सन के घर में.
हमारा जुपिटर कैप्रिकॉर्न में बैठा है खैर.
तो आपको ये पता है ना कि कोई नथिंग इज वर्किंग इन आइसोलेशन,
राइट.
तो जब मैं बोल रहा हूँ कि शुक्र मर्करी हाउसेस के अंदर खराब हो जाता है, खाली एक प्लांट से नहीं चलेगा, कम से कम ना 5 तरीके के अफ्लिक्शन आने चाहिए, तब वो मेजरली खराब बनाता है. अगर मोस्टली जो लोग होते हैं उनके राजयोग इसलिए फलित नहीं होते या उनके दरिद्र योग इसलिए फलित नहीं होते क्योंकि हम सबके चार्ज में मल्टीपल कॉम्बिनेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव है.
तो लोगों को कभी भी ये नहीं पढ़ना चाहिए माय क्या कहते हैं केतु इज इन 7th हाउस, व्हाट डज इट मीन,
नहीं
लाइक सिंगुलर वो कभी क्वेरीज नहीं करनी चाहिए. क्योंकि लोग करते हैं ना कि सिंगुलर सर्च करा केतु इन 7th हाउस का मतलब क्या है, वो जनरल रीडिंग दे देता है बट इट डज नॉट एक्चुअली शो योर चार्ट.
सो केतु 7th हाउस इज बेसिकली ट्राइंग टू टीच यू कि आपको लिबरेशन कैसे मिल सकता है.
नहीं नहीं मेरा नहीं है मतलब आई मीन हां ऑफ कोर्स
आई एम टेलिंग यू फॉर, बट इट कैन आल्सो मीन यू विल नॉट गेट पार्टनर, यू विल नॉट गेट पार्टनर हु विल बी लाइक्ड बाय एवरीवन. केतु इसी तरीके का पार्टनर देने वाला है,
भूत
भूत प्रेत, बिकॉज़ वो है ही केतु ना, भूत प्रेत ही है. तो आप ये सोचो कि मेरा पार्टनर किसी को पसंद आएगा, नहीं आएगा, पर क्या वो सोल सैटिस्फाइंग होगा? हाँ, अगर केतु प्रोमिनेंटली अच्छा बैठा हुआ है. तो सिंगल प्लैनेट नेवर एवर डिसाइड्स योर डेस्टिनी.
सो एज फार एज डेस्टिनी इज कंसर्न, वी हैव लर्न्ड सो फार कि चार्ट्स मिलाइए, गुण सिस्टम डज नॉट वर्क. बेटर है कि आप अभी वो चार्ट वाली बात कर लीजिए ताकि एंड में जाके आपकी मैरिज प्रॉब्लम ना हो. और एक और जो आपने बोला कि हर कोई मैरिज नहीं कर सकता,
हर कोई जो कि नहीं करनी चाहिए,
नहीं करनी चाहिए, जो कि एक बहुत सारे शायद मैं बोलूँगा पंडित ज्योतिष की एडवाइस के विपरीत आपने बात बोली. क्योंकि आप जब भी जाओगे किसी के ऑफिस, अरे बिल्कुल बिल्कुल आओ आओ ऐसे करते हैं,
उससे फ़ायदा क्या होगा अगर आप झूठ बोल भी दोगे? आपको एक हो सकता है एक टाइम का फी मिल जाए, आपको कोई
बस वही तो चाहिए,
पूजा पाठ का पैसा मिल जाए या स्टोन्स के पैसे मिल जाए. उस सामने वाला बंदा जो तंग होगा ना उसके बाद, वो ठीक नहीं है. और कुछ लोग ना स्थाई में शादी के लिए नहीं बोल रहे थे. कई लोग, मैं कितने लोगों को बोल चुका हूँ कि
उनके लक्षण ही नहीं होते देख के ही, तेरे से तो कौन रहेगा?
देख तेरा ना चार्ट शादी के लिए है नहीं.
अच्छा, आप ऐसे खुद से जज नहीं करते, चार्ट देख के बोलते हो?
आई ऑलवेज लुक एट द चार्ट कि देख तेरा चार्ट शादी के लिए है नहीं, बाकी तेरी इच्छा है. आई ऑलवेज कहता हूँ कि बाकी तेरी इच्छा अगर भोगना है तो.
एंड अगर लोगों को आपके काम के बारे में और जानना हो तो आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं, कहाँ इस बारे में जान सकते हैं? आपने कुछ वीडियोस बना रखी हैं वीनस के ऊपर तो अपने चैनल पे.
मैंने कुछ वीडियोस हैं, मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं मैरिज के ऊपर कि मैरिज किसको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मीडियम पे और अपनी वेबसाइट के ऊपर. और बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट है फेसबुक के ऊपर जिसके अंदर मैं कई बार लिखता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है, जस्ट गो अहेड एंड टेस्ट आउट. एंड ऑलवेज यूट्यूब इज देयर.
Amazing. Once again, thank you so much, Deepanshu ji, for another great episode. And we'll see you all on the next one. Take care. Bye-bye. Sayonara.